हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी देर हो गई मुझे, उसका कारण तो जाहिर है। कोई बात नहीं। श्री गिरिराज गोवर्धन की। श्री गिरिराज हरिदास वर्य है, उनकी कृपा अगाध है। उनकी कृपा से आज हमारी गोवर्धन परिक्रमा संपन्न हुई, और वो भी रोते रोते नहीं, आनंद से हुई। ये भाग्य की बात है। तो गौलोक वृंदावन में जब भगवान ने रास रचाया सबसे पहले, तो वो रास रचाने के बाद में यमुना जी का निर्माण हुआ। भगवान के और गोपियों के आँखों से और शरीर से जो दिव्य जल निकला, उसका एक तालाब तैयार हो गया, सरोवर, और उसको राधा रानी ने प्रसन्न होकर नदी का स्वरूप दिया। तो वो यमुना जी का जन्म है। उसके पश्चात राधा रानी श्री कृष्ण भगवान से मिलती है और कहती है कि मुझे अभी ऐसे एक स्थान की आवश्यकता है जिससे मैं आपके साथ अंतरंग लीला कर सकती हूँ, मोस्ट प्राइवेट पास टाइम्स। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उनके राधा रानी के ऊपर जो प्रेम है उस पर ध्यान किया, चिंतन किया उसके ऊपर। तो उस समय उनका जो प्रेम था, वो प्रेम बीज रूप में श्री कृष्ण के वक्षस्थल से प्रकट हो गया, एक तेज के समान, और वो जाकर गौलोक की भूमि पर स्थिर हो गया। और उसका रूपांतर एक छोटे से स्टोन में हुआ, शिला में हुआ, फिर वो चट्टान बनी, फिर वो चट्टान पर्वत बना, फिर वो पत्तान पर्वत महापर्वत बना। इस तरह से वो बहुत तेज़ी से सबके आंखों से सामने दिव्य तेज के साथ विस्तारित होने लगा। कहते हैं भगवान ने उनका विस्तार रोका एक समय पर। कहते हैं करोड़ों योजन ऊंचा था वो गौलोक वृंदावन में, और वही है गोवर्धन। सो श्री कृष्ण के राधा रानी के ऊपर जो प्रेम है उसका ही प्रतीक है गोवर्धन पर्वत। राधा रानी का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि राधा रानी की कृपा से ही यमुना जी का निर्माण हुआ है, राधा रानी की कृपा से ही गोवर्धन का निर्माण हुआ है। और जो भी श्री कृष्ण करते हैं वो राधा रानी की शक्ति और प्रेरणा से ही करते हैं। तो सब प्रकृति के मूल कृष्ण हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अहम सर्व सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ईश्वरोऽहम अहम भोगी, और भोक्ता राम व्यक्त व्यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये सब सत्य होने के कारण बावजूद भी श्री कृष्ण के अस्तित्व की मूल राधा रानी है, उनके क्या कहते हैं, शी इज द फाउंडेशन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एंड पर्सनैलिटी। और उन्हीं की प्रेरणा से ये लीलाओं का विस्तार होता है, रस का विस्तार होता है, ब्रज की लीलाओं का प्रकट्य होता है, ब्रज प्रकट होता है। ये सारी चीज राधा रानी के प्रेरणा से होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी देवता लोग पृथ्वी को गौ माता के रूप में लेकर गए थे, उस समय गर्ग संहिता के अनुसार वैवस्वत मनु के द्वापर 28वें द्वापर में ऐसा हुआ कि सामान्यता क्या होता है कि जब भी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गाय को लेकर यानी पृथ्वी को लेकर जाते हैं क्षीर सागर के किनारे, तो क्या होता है, क्षीर सागर के अंदर जो क्षीर उदकशायी विष्णु विराजमान है उनकी तरफ से एक मैसेज आता है ब्रह्मा जी के हृदय में, और वो हृदय में आने वाला आया हुआ मैसेज जो है उसको ब्रह्मा जी देवताओं को अपनी भाषा में समझाते हैं. इट्स लाइक इंग्लिश में कहते हैं ना, द मैसेज कम्स एंड ब्रह्मा डिकोड्स द मैसेज फॉर द डेमिगॉड्स. फिर जो उसमें सब कुछ द मैसेज इज ऑल कम्प्रहेंसिव, उसमें पूरा सर्वसमाहित संदेश होता है, क्या करना है, क्या होगा, क्या करूँगा मैं, आपको क्या करना है, सब कुछ उसमें रहता है. फिर देवता लोग प्रसन्न होकर चले जाते हैं और फिर भगवान अवतार लेते हैं. ये प्रभु रामचंद्र के विषय में जब भी हुआ, हिरण्यक्ष के समय, हिरण्यकश्यपु के समय, हर समय जब भी पृथ्वी जाती है रोते रोते, तो यही प्रोसीजर है उसका, मोडस ऑपरेंडी. इस बार क्या हुआ, वो क्षीरोदकशायी विष्णु वो स्वयं प्रकट हो गए. क्षीरोदक सागर, सागर के अंदर वो शेषशायी के रूप में है, वहाँ से वो प्रकट हो गए प्रत्यक्ष भक्ति रूप में, जो हमारे सब हृदय के परमात्मा के स्रोत हैं. और वो उनको लेकर गौलोक धाम गए, सबको लेकर पूरा एंटराज. और वहाँ पर बहुत चमत्कारी घटनाएं हुई. वहाँ पर जैसे वो गए, भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया राधा रानी के साथ. और फिर वो विष्णु जो लेकर आए थे उनको, वो श्री कृष्ण में विलीन हो गए. उसके बाद में प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ, पूरी वानर सेना के साथ वहाँ प्रकट हुए. और वो भी सबके आंखों के सामने सब लोग श्री हरि के अंदर विलीन हो गए. फिर नरसिंह भगवान, फिर वराह भगवान, फिर वामन भगवान, फिर यज्ञ पुरुष और यज्ञ पुरुष विष्णु और भगवान के अनंत अवतार जहाँ प्रकट हो गए, एक एक करके प्रकट हो गए और वो सब श्री हरि के अंदर विलीन हो गए. अब ये सब सीन जो है वो सब लोग देख रहे हैं जो गए हुए हैं. फिर भगवान पृथ्वी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं आऊँगा. वो सब मैंने आपको उधर भी बताया, किधर, रावल में, कि राधा रानी बेहोश हो गई. फिर राधा रानी को होश में लाया गया. फिर भगवान ने पूछा क्या हुआ. फिर उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो. उन्होंने कहा नहीं, आपको भी लेके जाऊँगा. उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगी. आप जहाँ वृंदावन नहीं होगा, जहाँ पर गोवर्धन नहीं होगा, जहाँ पर जमुना नहीं होगी, वहाँ पर मैं नहीं जा सकती. तो भगवान ने कहा पहले से मैंने भेज दिया, ये सब आपको मैंने पहले बता दिया है. तो उसके पश्चात यमुना जी कैसे आती है मैंने आपको बताया. 100,000 पहियों के रथ में बैठकर अपने हजारों करोड़ों सौ सहेलियों को लेकर, करोड़ों सोने की घंटाएं जिस रथ में लगी हुई है उससे निकलती है, फिर गौलोक को, फिर द्वारका, मथुरा, अयोध्या, वैकुंठ, ब्रह्मज्योति, विरजा नदी पार करके ब्रह्मांड में आती है, वो सब मैंने बताया आपको. उसी तरह से गौलोक से श्री गोवर्धन पर्वत जो है वो पृथ्वी के द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं हिमालय में. और ये सारे जो हैं वो व्यक्ति रूप भगवान के भक्त हैं. वो पर्वत के रूप में और नदी के रूप में और पेड़ के रूप में, कभी पर्वत, कभी जिसमें वन के रूप में भगवान की सेवा करते हैं. लेकिन वो सब भगवान के व्यक्ति रूप सेवक हैं, हर चीज़ चिन्मय है. तो ये द्रोणगिरी के रूप में जब प्रकट हुए तो हिमालय की शान बढ़ गई, क्योंकि ये स्वयं प्रकाशित पहाड़ था. इसके अंदर जड़ी बूटियाँ, इसके अंदर फल फूल, इसके अंदर गिरिकंदर, इसके अंदर झरने, वन, हर प्रकार का ऐसा आयोजन था जो सामान्यतः एक भक्त की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है. तो काशी से वो जब भी जन्म हुआ तो बहुत आनंद हुआ, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन ये पूरी हिमालय का गौरव बना. इतना सौंदर्य और इतना ऐश्वर्य और इतना सब, क्या कहते हैं, रिसोर्सेस. सो पुलत्स्य मुनि नाम के काशी के ऋषि थे, योगी थे वो, सिद्ध योगी थे वो. तो वो पुलत्स्य मुनि जो है वो घूमते घूमते हिमालय में आए. और आप लोगों को पता होगा कि काशी में पर्वत नहीं है. काशी एक 7 तीर्थों में से एक प्रमुख तीर्थ है, जहाँ पर जाने से सब पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है, जो आज हमको वाराणसी के रूप में जानते हैं, बनारस के रूप में जानते हैं, उसी को काशी कहते हैं. वो शिवजी का साम्राज्य है वहाँ पर, शिवजी राजा है वहाँ के. तो ये पुलत्स्य मुनि वहाँ के हैं और वो वहाँ से हिमालय पहुँचे तो उनको गोवर्धन को देख कर बड़े आकर्षित हुए. इतना सौंदर्य और इतना सब कुछ. और साधु कभी भी किसी भी वस्तु को देखकर इंद्रिय भोग से मोहित नहीं होता है. साधु जब कोई चीज़ देखता है तो उसको अपने आध्यात्मिक दिव्य या क्या कहते हैं, साधना के लिए जो आवश्यक है वो देखकर वो मोहित हो जाते हैं. तो इसमें क्या देखते हैं, काशी में पर्वत नहीं, यहाँ पर पर्वत है. तो जप करने के लिए, साधना करने के लिए, तप करने के लिए कुछ स्थान ऐसे पोषक होते हैं, तो वो कौन से स्थान है आप बताइए। मंदिर में जप करना अच्छा होता है, बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि मंदिर वैकुंठ के समान है, तो मंदिर में जप करना बहुत ही अनुकूल है। और नदी किनारे, गाय के सामने, गौशाला में, और हाँ एक एक बोलना, तुलसी महारानी के सामने, बिल्कुल सही बात है, नंदगांव में गुफा, गुफा कंदरा, कंदरा में, गिरी कंदर में। देखो इन्होंने कहा नदी, नदी यानी सब नदियां, ऐसा नहीं कि खाली यमुना जी और गंगा जी, वैसे सब कुंड, जल के सब जितने भी आशय हैं, जलाशय, सरोवर, कुंड जितने भी हैं, वो जप के लिए अनुकूल होते हैं। राधा कुंड की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रकार के कुंड, समुद्र, जलाशय है ना, विशाल समुद्र है, हाँ, पवित्र वृक्षों के नीचे, ये भी सही है, गुरु जी के समाधि के पास, मतलब इसका अर्थ हुआ कि वैष्णवों के संग में, जीवित या गए हुए वैष्णवों के संग में। और पर्वत के ऊपर, आपने पर्वत के अंदर बताया गिरी के अंदर, और पर्वत के ऊपर भी, उसके टॉप में जाने की जरूरत नहीं, पर्वत में कहीं भी बैठ के आप करेंगे तो जप में बहुत सहायता होती है। और बताइए, हाँ हाँ, तो वो हो गया पवित्र क्षेत्र, जैसे धाम, तीर्थ, वो वन पवित्र, उसमें गल्प वृक्ष होते हैं, आमले का है, पीपल का है, बरगद का है, अर्जुन वृक्ष है, और गुलेर का पेड़, गुलेर तो जानते हैं आप, गुलेर पेड़, औदुम्बर कहते हैं उसको, उम्बर, हाँ, बेल पत्र का वृक्ष, बेल फल का वृक्ष, ये सारे जितने 9-10 प्रकार के बहुत पावरफुल वृक्ष हैं, इनके नीचे भी बैठकर जप करना बहुत शक्तिशाली होता है, और भक्तों के बीच में बैठकर जप करना बहुत पावरफुल होता है। वो फिर वो रास्ते पर हो, या गटर के पास में हो, या महल में हो, कहीं भी हो। और कोई बताना चाहते हैं? तो ये पर्वत अपने साधन योग के लिए अच्छा है, ये देखकर वो मोहित हो गए थे। तो द्रोणगिरी के पास में आए, बोले मुझे आपका पुत्र दे दो, मैं इसको लेकर देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है, अरे पर्वत हिमालय में, वो कैसे वहाँ से काशी जाएगा? लेकिन साधुओं में, योगियों में सिद्धि हुआ करती थी कि वो पर्वतों को ऐसे फूल की तरह उठा सकते थे। भूछत्र होता ना, भूछत्र, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मशरूम, वो बच्चा कैसे उठाता है, वैसे साधु लोग उठा सकते हैं। और वो तो पूरा विकसित और पूरे हाइट वाला गोवर्धन था, तो वो उसको लेकर पिताजी को बोले उनके, तो पिताजी बेहोश हो गए, जैसे हड़ाई पंडित को जब साधु ने कहा कि निताई को लेकर जाना है मुझे, नित्यानंद प्रभु को, तभी वो बेहोश हो गए थे, दोनों माता पिता से भी बेहोश हो गए, लेकिन उनको धर्म की जानकारी थी, साधु की इच्छा अपूर्ण नहीं करनी चाहिए, शाप प्राप्त होगा या अमंगल होगा, तो उन्होंने फिर हाँ कर दी, तो गोवर्धन तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए। और हाँ, थैंक यू वेरी मच, तुरंत तैयार हो गए। तो गोवर्धन के उनके बीच में वार्तालाप हुआ, उन्होंने कहा मैं जहाँ आप चाहे वहाँ आ सकता हूँ, मेरी एक ही शर्त है, मुझे कहीं भी आप नीचे नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा। तो मुनि को लगता है नीचे रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं ऐसे आपको ले जाऊँगा कि मुझे कहीं रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुनि को अपने हर वेग पर नियंत्रण था। आप कहिए काम वेग, भूख यानी क्षुधा वेग, तृष्णा वेग, निद्रा वेग, क्रोध वेग, सभी वेगों पर नियंत्रण था, तो कोई वेग उनको त्रस्त करने वाला नहीं था, तो उनको पूरा आत्मविश्वास था। बोला तो चलो ठीक है। अभी गोवर्धन जी तैयार क्यों हो गए? क्योंकि उनका जो अंतिम गंतव्य स्थान है वो हिमालय नहीं है जहाँ पर जन्म हुआ है, उनका गंतव्य स्थान वृंदावन है जहाँ पर कृष्ण आने वाले हैं लीला करने के लिए, उसके लिए वो उनको भेजा गया है। तो ये चले, तो वो जो हिमालय से काशी का रास्ता है उसमें बीच में मथुरा मंडल आ गया, वृंदावन धाम। तो जैसे ही आया तो उसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, जैसे आया वो गोवर्धन का जो भक्ति का वेग है वो इतना करोड़ों गुना द्विगुणित हो गया, हाँ गुणित हो गया, कि वो भक्ति के वेग से ही उनको बोलो कथा कर रहे हैं, तो उनके वेग से मुनि को लघु शंका का वेग आया, जो साधारणता हो ही नहीं सकता है। और एक कारण ऐसा है कि बताया आपको, तो और एक कारण है कि गोवर्धन को लगा कि मेरा गंतव्य स्थान आ गया है तो मुझे यही रहना है, तो उन्होंने अपने आप को इतना भारी कर दिया, अपने आप को इतना भारी कर दिया कि इतने सारे शक्तिशाली योगी योग बल संपृक्त उनको जरा एक क्षण भी धर पकड़ नहीं सके, जो इतना दूर तक उसको लेके आए हैं ऐसे आराम से झट से नीचे रखा उन्होंने। ये भी कारण है, लघुशंका का भी कारण है। और गए लघुशंका का निवारण किया, शुद्ध होकर लौटे, फिर गोवर्धन को उठाने का कोशिश कर रहे हैं, गोवर्धन नहीं उठ रहे। मुझे कहा अरे उठो, आपने प्रॉमिस किया है कि काशी आएंगे आप, मैंने कहा आपने भी प्रॉमिस किया था कि आप नीचे रखेंगे नहीं। तो फिर वो कुछ नहीं कहा बोल पाए, लेकिन कुछ गुस्सा आ गया उनको, क्रोधित हो गए वो, तो उन्हें शाप दिया उनको कि आप रोज एक तिल के दाने के आकार से जमीन में धंस जाओगे। तो उन्होंने कहा मंजूर है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ इसके लिए, क्योंकि मन में क्या भाव है उनके कि मेरे ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं कुछ भी स्वीकार कर सकता हूँ, एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल, वो ठाकुर जी की सेवा मुझे करनी है किसी भी कीमत पर। तो आते ही गिरिराज जी ने अपना ये भाव प्रकट किया है। आमतौर पे पर्वत के लिए जमीन पर डसना बहुत कठिन बात है, एक्चुअली जैसे अस्तित्व ही नष्ट होने की बात है वो, धीरे धीरे इट्स लाइक अ टीबी, यू नो वन जो है टीबी, तो क्षय दिन में हर दिन आपका शरीर का क्षय होता है और मृत्यु की ओर हर दिन बढ़ते हैं हम, तो ये हर दिन इनका क्षय होने वाला है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि योग बल, अष्टांग योग बल, राजयोग बल, ध्यान योग बल, तप बल, तपोबल, ज्ञान का बल, शरीर की शक्ति का बल, किसी प्रकार का बल जो है वो भक्ति के बल के सामने टिकता नहीं है। भक्ति बल जो है सर्वोच्च बल है, भगवान भी जिससे वश होते हैं। देखो कहीं भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं कि आप तप कीजिए मैं आपका हो जाऊंगा, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए मैं आपका हो जाऊंगा, आप सिद्धि प्राप्त कर लीजिए मैं आपका हो जाऊंगा, क्योंकि मुक्ति भुक्ति सिद्धि सकल अशांत, भुक्ति यानी इंद्रियों का भोग, ये कितना भी प्राप्त करेंगे तो भी शांति प्राप्त नहीं होती, सबको पता है। लेकिन ये सबको त्याग करके जो ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष की इच्छा करता है वो भी अशांत रहता है। और सिद्धि यानी आपको चमत्कारिक शक्ति चाहिए, भाई आपको हाथ लगाए तो बीमार ठीक हो गया, आपका कैंसर ठीक हो गया, आपको हाथ लगाए तो एकदम जवान हो गए बूढ़े व्यक्ति, ऐसे लोगों की इच्छा होती है कि ऐसा व्यक्ति मिलेगा भाई मुझे हाथ लगाए तो कैंसर ही नष्ट हो जाएगा, डिवाइन हीलिंग प्रोसेस कहते हैं उसको। लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा नहीं कि ये सब करने से भगवान आपके हो जाएंगे, क्योंकि भुक्ति मुक्ति और सिद्धि इन तीनों में सब लोग ये अशांत क्यों रहते हैं, क्योंकि तीनों व्यक्ति स्व केंद्रित रहते हैं, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, वो कृष्ण का और साधना भक्त साधना मार्ग का उपयोग करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि मोक्ष भी एक प्रकार का स्वार्थ है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्त होना है, मुझे दोबारा मौत प्राप्त करके दोबारा लौट के नहीं आना है, इसमें भी स्वार्थ है। भले वो संसार से हटकर है, संसार में स्वार्थ कैसा है कि धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, बच्चा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, सौंदर्य चाहिए, ये सब दुनिया के प्राप्तियां हैं, वो तो स्वार्थ के आधारित है। लेकिन मोक्ष भी स्वार्थ है, क्योंकि उसमें भी स्व मुझे ही चाहिए, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपको मिले उनको मिले कौन देगा उसका प्रॉब्लम नहीं है। और सिद्धि भी वही है कि मैं कुछ चमत्कार की व्यक्ति बनूं। और ये सब तीनों चीज़ें जो हैं मुक्ति भुक्ति और सिद्धि, ये सब भगवान का आधिपत्य है इसके ऊपर, दिस इज कृष्णस डोमेन। और वो भक्त जो साधक जो है वो भगवान का डोमेन जो है वो खुद के लिए चाहता है, सिद्धि भगवान सिद्धेश्वर है, उनके चरणों में सारी सिद्धियाँ लेटी रहती है, हमेशा पड़ी रहती है। भगवान सिद्धेश्वर है, सब सिद्धियाँ उनके चरणों से निकलती है। वो सिद्धि हमको चाहिए जो उनकी प्रॉपर्टी है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। एक भक्ति ऐसी होती है जिसमें वो स्व की जगह पर हम, हमारी जगह पर श्री कृष्ण को हम स्वेच्छा से बिठाते हैं, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से जानबूझ के नॉलेज के आधार पर हम अपने आप को हटाकर अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान को बिठाते हैं, तो पूरा हमारा जीवन का जो आउटलुक है बदल जाता है कम्प्लीटली कम्प्लीटली। और वो ऐसी वस्तु है कि जब हम भक्ति करते हैं तो श्री कृष्ण भी हमारे वश में हो जाते हैं। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, उसका प्रथम श्लोक में ही लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण भक्ति एक तो दुर्लभ है, लेकिन जो प्राप्त करता है श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के लिए अर्पण कर देते हैं। ही बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ हिज डिवोटीज। जिनकी हम सब लोग प्रॉपर्टी है, वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाते हैं जो उनके भक्त हैं। यानी कि ये सब लोग जो हैं सिद्धि अष्टांग योगी, ये भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है वो भगवान से भी आपको ऊपर बना देता है, क्योंकि भगवान आपके दास बन जाते हैं। यानी कि भक्ति, भक्त जो है वो भक्ति भगवान को दास बनाने के लिए नहीं करता है, भगवान खुद चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दास बने। अर्जुन के स्वार्थी बने वो, लात लत्ता प्रहार खाते हुए युद्ध में खड़े रहे वो 18 दिन तक। पता है आपको सारथी बनना क्या होता है? उस समय पर इतना शोर होता है ना, तो आप सारथी को बोल नहीं सकते दाहिने लो, बाएं लो, सीधे चलो, फास्ट चलो, स्लो चलो, ये कोई बोलने की गुंजाइश ही नहीं, इतने पास खड़े, लेकिन इतना शोर होता है वहाँ पर। तो सारथी क्या क्या करता है, महारथी सारथी के लिए अपने दाहिने पैर से उसके दाहिने पीठ पर लात मारता है, तो समझता है वो कि मुझे राइट में जाना है। फिर लेफ्ट पैर से लेफ्ट लात मारता है, लेफ्ट कंधे पर या पीठ पर, तो वो लेफ्ट जाता है, और बीच में लात मारता है तो स्ट्रेट जाता है। फिर घोड़ों को साफ करना है, घोड़ों को चारा खिलाना है, कभी थपथपाना है घोड़ों को, एनकरेज करना है, ये सब भगवान कृष्ण ने किया अर्जुन के लिए। यहाँ तक कि ये तो बीच में बहुत बार रथ घोड़े थक गए, तो अर्जुन ने ना बाणों का ऐसा एक आयल, क्या कहते हैं उसको, आयल बनाया, आयल मतलब एक ऐसा बेट बनाया, द्वीप बनाया, जिसमें रथ के रणांगण के बीच में, रणभूमि के बीच में ऐसा एक एरिया है जो पूरा बाणों से ऐसा बनाया उसका फेंस, और उसके बीच में आपका घोड़े आपका रथ विश्राम कर रहे हैं, चारा खा रहे हैं, जो भी करना है मालिश करना है। तो भगवान ने कहा तुम्हारे घोड़े थक गए, तो अर्जुन कहते हैं कि ये समय नहीं है घोड़ों को थकने का। बोले सही बात है आपकी, लेकिन करूँ क्या, थक गए वो भी उनको रेस्ट देना ही पड़ेगा। तो अर्जुन बहुत विचलित हो रहे हैं, और कृष्ण शांति से घोड़ों को थपथपा रहे हैं, उनको मालिश कर रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, और बात भी कर रहे हैं उनसे, उनको उत्साह दे रहे हैं, थपथपा रहे हैं, तो ना जैसे चार्जिंग अप। उसमें लिखा है कि ये सब करने के बाद में भगवान ने अर्जुन के घोड़ों के चरणों की रज अप लेकर अपने माथे पर लगाई। क्यों? कि मेरे प्रिय भक्त अर्जुन के घोड़े हैं, उसकी सेवा में, तो भी मेरे लिए पूजनीय है। हाँ, दास दासानुदास गोपी भरतुर पदक मलयो दास दासानुदास। भाव यह है कि भगवान को केवल भक्त ही पसंद नहीं है, भक्तों की सेवा करने वालों की सेवा करने वालों की सेवा करने वाले भी उनको बहुत पसंद है, उनके हो जाते हैं सबसे पहले वो। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि गोवर्धन में इतनी शक्ति है कि बहुत सहजता से एक सिद्ध योगी को गोवर्धन ने परास्त कर दिया। वो परास्त करने के मूड में भी नहीं, भक्ति का आवेश इतना है कि वो योगी परास्त हो गया और क्रोधित होकर शाप देकर चला गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद दो युग पूरे और एक युग के अंत तक 125 साल पहले तक वो वेट करते रहे वहाँ पर। अभी वहाँ पर आके अपना पोजीशन लेके खड़े हैं। तो सेवक को कैसे होना चाहिए? मालिक के पहले आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालिक आके बैठे हैं और सेवक अभी आ रहा है, कमिंग कमिंग सर कमिंग, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम में हूँ, ऐसा नहीं होता है। सेवक को आके पहले हाजिरी देनी होती है। जैसे गुरु जी आते हैं ना, तो सारे शिष्यगण पहले ही आकर रेडी होते हैं उनका स्वागत करने के लिए। ऐसा नहीं कि गुरु जी आ रहे हैं और वहाँ पर कोई नहीं सभा में, राधा गोपीनाथ में कोई नहीं है, तो गुरु जी आके वहाँ देखते कोई नहीं तो वापस चले गए, ऐसा नहीं होता कभी। सारी सभा फुल होती है फिर गुरु जी प्रवेश करते हैं, सब लोग खड़े होते हैं उनका वंदन करते हैं, ये सेवक का भाव है। तो खड़े हो गए वहाँ पर, अब वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल इंतज़ार हो रहा है। और इंतज़ार करना भी भक्ति का एक बहुत प्रमुख लक्षण है, टू जस्ट वेट। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बताया है, इवन दोज हु वेट दे डू ग्रेट सर्विस। जो वेट कर रहे हैं शांति से, इत्मीनान से, संयम के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, संयम बहुत ज़रूरी है। रूप गोस्वामी बताते हैं, उत्साह धैर्याद निश्चय, धैर्याद निश्चया, धैर्य जो है ना, ये संयम का लक्षण है। कि सब कुछ हमके अभी के अभी चाहिए, 5 साल से जप कर रहा हूँ अभी तक भगवान नहीं दिखे, या कोई बोलेगा 35 साल से जप कर रहा हूँ अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, किधर है भगवान। अरे 35 करोड़ साल जन्म लेकर अलग अलग योनियों में चल रहे हो, भूख ले रहे हो, और 35 साल जन्म जप किया तो तुम्हें भगवान दर्शन देना चाहिए। वो 35,000 करोड़ साल का जो जन्म का जो भोग का अनुभव और इम्प्रेशंस है वो कब नष्ट हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए संयम की ज़रूरत है, और हमारे लिए संयम का भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे जन्म के 10,000 साल के अंदर, जिसको स्वर्ण युग कहते हैं कलयुग का, उसके अंदर कोई भी हरिनाम का आश्रय लेगा तो उसी जन्म में लौट जाएगा, वो 50-60 साल की जिंदगी में लौट जाएगा। तो हमें तो कोई रीज़न ही नहीं है इम्पेशन होने का, अरे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। आपको केवल, हमको केवल इस जन्म में भगवान नाम को शरण प्राप्त करनी है बस, सच्चे दिल से। कोई योग्यता अयोग्यता कुछ हो ना हो, योग्यता विचारे कुछ ना ही कोरे, कोई योग्यता विचार करने की जरूरत नहीं है, कल भगवान नाम लो बस। यहाँ पर गोवर्धन आने से ही साबित कर रहे हैं, वहाँ पर उत्सुकता इतनी है कि पिताजी रो रहे हैं, पिताजी बेहोश हो रहे हैं, गोवर्धन तो रेडी है जाने के लिए तुरंत। रास्ता में जा रहे हैं तो उनका भक्ति का आवेश इतना है कि मुनि को परास्त कर दिया उन्होंने, अभी वेट कर रहे हैं। तो सत्ययुग समाप्त हो गया, त्रेतायुग आया, त्रेतायुग के अंत में प्रभु रामचंद्र आए। और आप सब जानते हैं रावण उसका सीता का हरण करते हैं, और वो अशोक वाटिका में है, और वहाँ पर अभी उसको हनुमान ने छलांग लगा कर ढूंढ लिया है, और अभी जाना है सबको, क्योंकि तो सीता ने हनुमान के कंधे पर बैठकर आना और सब मामला वहीं ख़त्म करना जो है, इस मामले को अनुमति नहीं दी उन्होंने, नहीं तो वहीं पर रामायण समाप्त हो जाता ना, कोई ज़रूरत नहीं। सुंदरकांड हो गया, हनुमान आ गए सीता को लेकर, सब लोग ने दीपक जलाए और सीता जी वापस आ गई, ऐसा नहीं हुआ ना। उन्होंने कहा कि मैं विवश होकर उसका स्पर्श सहन करते हुए गई, मैंने दिल से स्पर्श नहीं किया था उसको, या उसके साथ दिल से नहीं गई थी मैं, मुझ पर ज़बरदस्ती की गई थी, हर प्रकार के मुझे स्पर्श कर गया कि मैं कुछ नहीं कर पाई, असहाय थी मैं। लेकिन अगर तुम्हारे पीठ पर आऊँगी तो मैं स्वेच्छा से आऊँगी, तो वो नहीं हो सकता है। और दूसरा, हनुमान जी भी जानते थे कि हाँ ठीक है, क्योंकि इनका वध तो प्रभु राम से हाथ से होना है। वो भी उस समय रावण को मार सकते थे जब वो उनको छोड़कर जब सभा में गए, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि प्रभु को श्रेय मिलना चाहिए। लोग कहेंगे हनुमान ने रावण को मार दिया, तो प्रभु ने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो एक सेवक देखो कैसा है ना, कितना बड़ा टेम्पटेशन है। हाँ, यू कैन बिकम अ हीरो ऑफ रामायण, बट भक्त कभी भी श्रेय लेता नहीं है। दुनिया के लोग ना दूसरों का श्रेय छीन लेते हैं, क्रेडिट, और भक्त अपना क्रेडिट दूसरों को देते हैं। तो फिर वो बाद वापस आ गए, सब मैसेज दिया, फिर अभी क्या हुआ, एक ही मार गए, समुद्र में ब्रिज बनाना है, तो फिर अद्भुत तरीके से ब्रिज बनाया गया, मतलब शुरू हो गया बनाने का। सब लोग राम का नाम लिख रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो तैर रहे हैं, प्रभु राम आते हैं तो मैं खुद राम हूँ, और लेते हैं नाम लिखते नहीं, वो छोड़ देते हैं, वो डूब जाता है। तो प्रभु खुद पूछते हैं हनुमान जी से, अरे आप तो नाम लिख रहे हो और मेरा ही नाम लिख रहे हो, तो प्रभु आपने जिसको त्याग दिया उसको डूबना ही है, आप त्याग रहे हो उसको तो डूबना ही है उसको, तो राम नाम की महिमा प्रकट होती है। लेकिन ना वो कैसा है ना, अभी हमारा छाता का ब्रिज है ना, छाता यहाँ की जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा रास्ता है यहाँ से बरसाना जाने के लिए, कई सालों से वहाँ पर ब्रिज बनना, अभी तक वैसे ही पड़ा है। पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है और क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या है, जनता कुछ नहीं कर सकती है, ना कोई मैंडेट है, ना कोई तारीख है, ना कोई इसके पहले नहीं बनेगा तो कोर्ट केस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल रहा है। लेकिन सीता जी के समय ऐसा नहीं था, सीता ने एक महीने का मैंडेट दिया था, एक हनुमान को बताया था, एक महीने के अंदर अगर प्रभु नहीं आते हैं तो मेरा मृत शरीर मिलेगा उनको यहाँ पर, फिर आके कुछ फायदा नहीं है, आओ ये मत। तो इन सब लोगों को एक्सप्रेस वे में बनाना है, ऐसा नहीं कि उसके बगल में पेड़ भी लगाने हैं, अच्छे सारे फूल पौधे, अच्छे रंग बिरंगी सब बढ़िया दिखे, हाँ उसको पेंट करना है, यहाँ पर राइट लेफ्ट एरो ऐसा कुछ है नहीं, उनको खाली जाना है बस वहाँ पर। तो उसमें हाई स्पीड से बन रहा है वो, एकदम एक्सप्रेस मतलब इमरजेंसी में बन रहा है वो। और हनुमान जी तो रामेश्वर से लेकर हिमालय में पूरी अप डाउन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बड़े बड़े पहाड़ उठा के ले जा रहे हैं और धड़ाधड़ डाल रहे हैं राम का नाम लेकर। उसमें एंड में सात कोस की जगह बचती है और सात कोस की जगह अभी वो सोच रहे हैं कि भी सात कोस के लिए 50 पर्वत कौन लाएगा या 50 चट्टान कौन लाएगा, एक ही सात कोस का मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, तो एक ही झटके में फिट करेंगे उसको, मामला पूरा हो जाएगा। तो हनुमान जी ढूंढ रहे हैं आकाश में से, उनको गोवर्धन दिखाई पड़ता है और झट से उतरते हैं, और वो उनको टाइम नहीं ना अभी, जैसे नदी में आप जब जाते हो ना तो ऐसा आपको बताता हूँ, कभी नदी आपको दिखेगी ना तो समझो आप कार में हो या कोई फास्ट व्हीकल में हो और नदी आपके सामने से ऐसे उसके ऊपर से ब्रिज जा रहे हो तो नदी दिखाई पड़ती है, तो आपको शास्त्र के अनुसार उतर कर नदी में आचमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता है ना। तो जहाँ पर बैठे हैं गति में हो फिर भी नदी को प्रणाम करना चाहिए, मन में आचमन करके वंदन करना चाहिए, ये रिवाज है। जब हनुमान गरुड़ जी भी यहाँ पर वृंदावन में आए थे अमृत कलश लेकर, तो जब जमुना जी को देखा तो कलश उस पेड़ पर रखा अमृत का, हमारे यहाँ कालिया घाट पे, अभी आप जाओगे ना तो कलश को जरूर देखना, अभी भी वो पेड़ पे कलश है, लकड़ी का बना हुआ प्रॉपर कलश है वो अमृत कलश। तो क्यों रखा उन्होंने, क्योंकि वो जमुना जी का दर्शन किया तो जमुना जी को वंदन करना उन्हें अपना कर्तव्य समझा, इसलिए वो उतरे, आचमन किया, स्नान किया, प्रणाम किया, संधि किया, फिर कुछ अमृत के बिंदु उस पेड़ पर डाले और फिर वो लेकर चले गए। उसी के उपलक्ष में मूल जो कुंभ है वो वृंदावन में होता है, बाकी जो कुंभ है वो उपकुंभ कह सकते हैं उसको, सेकेंडरी जो हरिद्वार और त्रिवेणी संगम उज्जैन और नासिक में होता है वो सेकेंडरी है। वो राक्षस और देवताओं के मुठभेड़ में जितने ऐसे बूंदे यहाँ वहाँ गिरी ना, मतलब वो अशांति और युद्ध में गिरे हुए अमृत बिंदु हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम कुंभ बनाते हैं। लेकिन ये जो कुंभ है ये शांति से और प्रेम से डाले गए अमृत बिंदु हैं, ये मूल कुंभ है वृंदावन का, हर 12 साल में होता है, हमको पता भी नहीं था, हम एक बार आए थे तो यहाँ पर कुंभ चल रहा था, हमने अटेंड भी किया वो कुंभ मेला, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो, टॉप मोस्ट कुंभ मेला जो वृंदावन का कुंभ मेला होता है, 12 साल में एक बार होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वंदन करना चाहिए, तो इनको वंदन करने का समय नहीं है, आके झट से उन्होंने पर्वत को उठाना शुरू किया, तो भी सब पर्वत तो उठ गए लेकिन ये नहीं उठ रहे, तो पहले एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, दोनों हाथ से पूरा बल लगाकर जय श्री राम करके उठाने का प्रयास किया, फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ, तो उनको लगा कि अरे देखना चाहिए कितना बड़ा विस्तार है इसका, शायद बहुत लंबा होगा, तो इस दिशा में गए उड़ते उड़ते, तो गिरिराज जी उस दिशा में विस्तारित होने लगे, बढ़ने लगे, तो हनुमान को एंड ही नहीं मिला उनका, तो वो दूसरी तरफ गए, बोले इधर से देखते हैं, उधर से भी उनका एंड नहीं मिला, तब समझ गए कोई दिव्य वस्तु है, दिव्य व्यक्ति है, तुरंत झुककर प्रणाम किया, बोले महाराज जी आप कौन हो, तो कहते मैं गोवर्धन हूँ, तो बोले क्यों उठा रहे हो मुझे, बिना बोले बिना कहे मुझे उठा रहे हो, क्या समझते हो क्यों उठा रहे हो बताओ, तो उन्होंने संक्षिप्त में रामायण बताया उनको पूरा शॉर्ट में, क्योंकि उतना भी समय नहीं बताने के लिए, शॉर्ट में सब कुछ बता दिया कि प्रभु की ऐसी सेवा है। तो ना वो गोवर्धन जो थे ना वो कॉटन की तरह हल्के हो गए, लाइटर देन अ कॉटन, रुई की तरह हल्के हो गए, और झट से हनुमान ने उनको उठाया। हम लोग हनुमान भी होंगे ना तो भी एटिकेट को पालन करना चाहिए हमको, वी आर नॉट एग्जेम्प्ट जस्ट बिकॉज इमरजेंसी इज देयर। हाँ आपत्कालीन धर्म होता है लेकिन सब लोगों को शिष्टाचार पालन करना आवश्यक होता है, यू कांट जस्ट गिव एक्सक्यूज एवरी टाइम, अरे ये इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी है, ये स्थिति है, वो स्थिति है. जितना हो सके जब तक देहधारी रूप में हम काम कर रहे हैं, हमको शिष्टाचार पालन करना आवश्यक है. वेर एवर वी गो, कितने भी साधु बन गए, संत बन गए, परमात्मा बन गए, तो भी माता को प्रणाम उसको करना ही है. समझ में आया आपको? जब कोई परम महामंडलेश्वर साधु अपनी माता को मिलता है, उसको अपनी माता को प्रणाम करना चाहिए, भले वो भक्त भी नहीं होगी या बन नहीं होगी, जो भी कुछ है वो संत का कर्तव्य है कि माता को दंडवत प्रणाम करे. प्रधानमंत्री हो गए तो भी रोज वो कभी जाते हैं गुजरात में, तो प्रधानमंत्री अपनी माता का दंडवत करते हैं, क्योंकि माता के लिए तो पुत्र ही होता है वो, माता के लिए प्रधानमंत्री नहीं होता है. तो फिर वो हनुमान जी को, हनुमान जी उनको लेकर उड़ गए आकाश में. अभी झट से उनको पहुंचना है और वो 7 कोस का पर्वत जो है वो वहाँ बिठाना है जाके. तो केवल आकाश में उड़ गए तो आकाशवाणी हो गई देवताओं की तरफ से कि ब्रिज पूरा हो गया है, अभी जो जो काई काई जो जो उठा रहे हैं उसको वहीं रखो और पहुंच जाओ ड्यूटी पर. हनुमान जी तुरंत नीचे उतरे और पहाड़ को नीचे रख दिया. अब इतना सब हुआ, पर प्रयास हुआ, यहाँ वहाँ जाना देखना, विस्तार देखना, अचंभित होना और सब कुछ हो गया. और गोवर्धन जी इतने खुश हो गए कि इतने वर्षों के बाद, 2.5 योगों के बाद में सेवा मिल रही है, प्रभु की सेवा, दर्शन मिलेगा, सेवा मिलेगी. लेकिन वो भी एक क्षण में नष्ट हो गई. तो कहते हैं हनुमान के सामने गोवर्धन पर्वत ने इतना विलाप किया, इतना शोक, इतना रुदन, यानी इतने रोए हनुमान गोवर्धन जी, कि स्वयं भक्त शिरोमणि दास शिरोमणि हनुमान जी जो है ना, वो भी मोहित हो गए, देख के अचंभित हो गए कि ये कैसा भक्त है, कितना विलाप कर रहा है कि एक सेवा छूट गई तो कितना रो रहा है. जाके पूरा प्रभु को बताया कि ऐसे ऐसे आपके भक्त को विलाप है, वो अचंभित है. वो प्रभु कहते हैं हाँ मेरा भक्त है, मेरा इंतजार कर रहा है, जाओ उनको संदेश दे दो कि आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ. एक ऑप्शन में अभी भी आपको मैं इस पूरे हुए ब्रिज में फिट कर दूंगा, मतलब स्थान दे दूंगा, और आपके ऊपर जैसे मैं सभी पत्थरों पर ऊपर चलने वाला हूँ, जो जो पत्थर आए हैं सब पर मैं मेरे चरण कमल रख के लंका में जाने वाला हूँ, लेकिन फिर लौट के उस पर आने वाला नहीं हूँ, मेरा रिटर्न टिकट फ्लाइट से बुक किया है मैंने. समझ में आया ना आपको? जब लंका को मतलब जीतेंगे, रावण को मारेंगे, तो रावण की प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, पुष्पक विमान भी उनका हो जाएगा, तो रिटर्न फ्लाइट उनकी पुष्पक विमान से है, लंका टू अयोध्या डायरेक्ट फ्लाइट. तो कह रहे थे कि अभी आपको कुछ क्षणों का मेरा चरणों का स्पर्श मिलेगा, इतनी ही कृपा होगी. ऑप्शन नंबर 2, मैं अगले युग में दोबारा अवतार लूँगा पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, और उसमें कई सालों तक आपके इर्द गिर्द मेरी अंतरंग लीलाओं को संपन्न करूँगा. हनुमान जी आके संदेश देते हैं, तो गिरिराज जी गोवर्धन ऑप्शन नंबर 2 चुनते हैं. लेकिन वो ऑप्शन नंबर 2 चुनने का कारण क्या है? क्योंकि उनमें ज़्यादा सेवा है, भगवान को प्रसन्न करने का बहुत लंबा समय है, उसमें स्वार्थ तो कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत दुख भी है, क्योंकि और एक युग तक इंतजार करना पड़ेगा. ऑलरेडी 2.5 युग तक इंतजार किया है, और एक युग पूरा इंतजार करना पड़ेगा. कम से कम 8,64,000 साल का समय है, अंदाज से बोल रहा हूँ, बहुत लंबा समय है. तो हनुमान जी बता रहे हैं, तो उनको कह रहे मैं ये चाहूँगा कि अगले जन्म में ही मैं वेट करूँगा और बहुत लंबे समय तक उनकी सेवा करूँगा. तो होता ये है कि वो कहते बहुत रोते हैं, फिर भी और एक बार रोते हैं. तो कहते हैं मैं ना इतना, अभी कैसा होता है ना, मैं आपको एक बता दूँ कारण. समझो आपको जलेबी बहुत अच्छी लगती है और बहुत दिन से आपने जलेबी नहीं खाई है, तो कुछ नहीं होता एक्चुअली, आप बिजी हो और कुछ खा रहे हो. लेकिन समझो आपके सामने पूरी जलेबी की थाल आ गई, गरम गरम घी में तली हुई केसर की, ब्रज की, गोवर्धन की जलेबी, और आपके सामने रखी गई और आपको बताया गया कि जलेबी अभी परोसेंगे हम, और कुछ देर बाद वो पूरी थाली कोई लेके जाता है और कहता है सॉरी ये गलत जगह पे आ गया, वो घर पे जाना था. तो क्या होता है, आपके जलेबी की तड़प जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि यू सॉ इट एंड इट्स टेकन अवे फ्रॉम यू. होता है ना ऐसे, ऊपर से भूख भी लगी हुई है, ऊपर से जलेबी अच्छी भी लगती है. तो इनका क्या हुआ, इंतजार कर रहे ठीक है, लेकिन सेवा का मौका दिया और छीन लिया गया, तो ये बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए. तो उस व्याकुलता में और भी कहा जा रहा है कि और एक युग तक इंतजार करो, तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए. तो कह रहे हैं कि मैं ना ये अभी का जो आगे का समय है, देखो ढाई युग तो अकेले बिता दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन कह रहे ये अगला समय जो है ना वेटिंग का, वो मैं अकेले नहीं बिता पाऊंगा, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा इसको। इसलिए हनुमान जी मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि आप एक रूप में मेरे साथ यहाँ रहेंगे और मुझे सांत्वना देते रहेंगे। तो वो रूप है उनका पुछड़ी का लौठा बाबा, उस रूप में वो भी तप करते रहे और ये भी इंतजार करते रहे और दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दिया और एक युग बिताया। फिर जब कृष्ण आए तो पुछड़ी का लौटा बाबा ने रोल बदल दिया, वो ग्वाल बाल बन गए और कृष्ण की लीला में समाविष्ट हो गए और गिरिराज जी भी अपने समाविष्ट हो गए। सुंदर लीला है, देखो कितनी सुंदर, कितने भक्तों का कितना प्रेम और कितना सहायता सपोर्ट सब चीज़ का, इधर कॉमरेडरी एवरीथिंग वी सी हियर, सो वंडरफुल। बस जीवन में अपने ना श्री कृष्ण प्रधान अधिष्ठान होना चाहिए, कृष्णा शुड बी द टॉप मोस्ट फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। जैसे ही आप वो स्वेच्छा से तय करते हो कि आज से इस क्षण से श्री कृष्ण मेरे जीवन के अधिष्ठान है, फाउंडेशन है, तब से आपका जीवन का हर रुख बदल जाता है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग, दुखी भी हो भगवान दूर भी है, भगवान का मिलन भी हो रहा है, सेवा मिल रही है नहीं मिल रही है, हर तरफ से जीवन श्रेष्ठ है, हर तरफ से आपका जीवन जो है एक आदर्श है सबके लिए। बस केवल भगवान आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठान होना चाहिए। अभी क्या है, मेरी इच्छा, मेरा भोग, मेरा ये मेरा वो, इसमें हमारा अधिष्ठान बसा हुआ है, फाउंडेशन। इसलिए हम लोग अभी भी भक्ति में आने के बाद भी तड़प रहे हैं, क्योंकि हम लोग साधना कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग सिंसियर डिवोटीज हैं, सब लोग सिंसियर जप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान को अपने को उतार कर हृदय के सिंहासन पर बिठाया नहीं है। तो हम भी बैठे हुए हैं, बोले भगवान आके साइड में बैठ सकते हो मेरे, मैं भी आप भी, आपका नाम का जप कर आप भी बैठो मैं भी बैठता हूँ, लेकिन मैं उतर जाता हूँ और आप भी बैठो मैं नीचे बैठता हूँ, ये दूसरी बात है। पर वो हमको करना है, उसको रियल भक्ति कहते हैं। भगवान क्यों भक्त के अधीन हो जाते हैं, क्यों छपरी के जीते झूठे बेर खाते हैं, क्यों वो जनाबाई के घर पर जाकर भैंस धोते हैं उसकी, उसके भैंस चराते हैं, भैंस धोते हैं, कपड़े धोते हैं उसके, भगवान को क्या जरूरत है। लेकिन भगवान अपने प्रेम भक्त के प्रेम में वश हो जाते हैं और दास बन जाते हैं उनके, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सो गिरिराज जी उसका प्रतीक है। तो मैं भी आपको गिरिराज जी के महिमा की कहानी बताता हूँ, बहुत थोड़ा डिटेल टेक्निकल है इसलिए मैंने वो नोटबुक मंगाई। देखो ये कथा गर्ग संहिता में आती है। एक विजय नाम का विप्र था, विप्र यानी ब्राह्मण, वो मथुरा में किसी काम से आया था, कोई कर चुकाने कुछ खरीदने वगैरह ऐसे आया था और लौट के जा रहा था। और जब लौट के जा रहा था तो गिरिराज के सामने आया, मतलब वो जब से मथुरा से हम जाते हैं ना तो बीच में गिरिराज जी आते ही हैं, मथुरा से अगर आपको दिल्ली जाना है तो बीच में गिरिराज जी का आता है जगह, फिर हम उसको क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, फिर बरसाना आता है, कोशी आती है, फिर हम दिल्ली चले जाते हैं। तो ये ब्रज के अंदर से जा रहा था तो जो गोवर्धन बीच में आया तो गोवर्धन को पार करके चलने लगा, तो गोवर्धन की एक शिला उसने उठा ली अपने हाथ में और हाथ ले में चलने लगा। उतने में क्या हो गया ना, एक भीषण आकृति वाला राक्षस वहां पर प्रकट हो गया। कैसा भीषण था वो, उसका मुंह जो था ना वो छाती में था, जैसे आपका मुंह जो आपके कंधे पर है ना, उसका मुंह की छाती में था। दिस इज द फेस ओवर हियर। तीन पैर थे उसको, छह हाथ थे और तीन हाथ तीन पैर और छह भुजा थी उसकी। कैसा दिखता होगा वो, लंबी जीभ, टेढ़े दांत, लाल नेत्र, लाल केश, इस प्रकार से भयंकर रूप में वो आया। और वो भयंकर प्यासा और भूखा था, तड़पता हुआ भूख से आया। उसको लगा कि अच्छा ब्राह्मण दिख रहा है, उसको खा जाता हूँ। तो उसने प्रवेश किया ब्रज में, मतलब गोवर्धन के क्षेत्र में, उसको खाने जा रहा था तो ब्राह्मण को इतना डर लगा, उसने क्या कुछ भी है नहीं उसको शस्त्र अस्त्र, तो वो पत्थर जो था शिला गोवर्धन की वो लेकर उसको दे मारी उसने। जैसे ही वो शिला का स्पर्श उसको हुआ, उसका वैकुंठवासी दिव्य देह में रूपांतर हो गया एक ही क्षण के अंदर। कैसे दिख रहा है वो अभी, हाथ में वंशी है, वक्ष पर वनमाला है, मस्तक पर मुकुट है, कान में कुंडल है, पीतांबर पहना हुआ है, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र पद्म धारण किया हुआ है, चमकदार तेजस्वी शरीर है उसका, सब जगह प्रकाश फैल रहा है, आनंद का आनंद भी फैल रहा है, क्योंकि दिव्य देह होता है ना उसको देख के भी आनंद होता है। तो ओके, तो ब्राह्मण ही पूछता है, अरे आप कौन हो, ये ऐसे कैसे हुआ? तो ब्राह्मण उनको ही पूछता है क्योंकि ब्राह्मण को समझ में आएगा ऐसा कैसा हो गया, मैं अभी मरने वाला था एक क्षण के अंदर, वो खाने वाला था मुझे और मैंने पत्थर फेंका तो चमत्कार हो गया। तो वो जो राक्षस रूपांतरित अभी देवता है जो भी वैकुंठवासी है, वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं धनी वैश्य था एक जमाने में, मदिरापान, वेश्यागमन, जुआ, ये मेरा रोज का खेल था। मैंने माता पिताओं को धन के लिए विष लेकर मार डाला, मैंने पत्नी को और किसी स्वार्थ के लिए तलवार से मार डाला, फिर वेश्याओं से संग किया, वेश्या को अंधकूप में ढकेल दिया और उसका खून कर दिया, फिर सैकड़ों को मैंने स्वार्थ के लिए फांसी लगाकर हत्या कर दी उनकी, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण ये सबके वो अपने अपने स्वार्थ के लिए निरंतर मारता रहा मैं। फिर एक दिन काल सर्प के डसने से मेरी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ ध्यान से सुनना, इसके लिए नोटबुक मंगाइए। एक मनवंतर तक मैं कुंभीपाक में रहा। आप लोगों को कुंभीपाक का एड्रेस पता है और वहां पर क्या होता है पता है? कुंभीपाक एक भयंकर नरक है। हमारे निर्माण में 14 भुवन है, यानी 7 स्वर्गलोक है, 1 पृथ्वीलोक है, 6 नरक लोक नहीं कह सकते उसको, निचले लोक है, अतल, अवितल, सुतल, तलातल, रथातल, पाताल, ऐसे। उसके नीचे 27 नरक है एक्चुअल, जहाँ पर जीवों को दंड मिलता है। 27 प्रकार के नरक है, उसमें से एक कुंभीपाक है। एक है तप्त सुरमी, वह भयंकर नाम है, और आप पढ़िए 5वां स्कंद, थोड़ा डिटेल में मिलेगा आपको वहाँ क्या क्या होता है और वहाँ कौन कौन पहुँचते हैं कौन कौन वहाँ जाने के योग्य है। तो वो कुंभीपाक में क्या होता है कि खास करके जो एक व्यक्ति अधिकार प्राप्त करके अनेक लोगों का एक साथ अकल्याण करता है, समझो मैं मंत्री हूँ और मैंने एक साइन कर लिया पेपर, एक रेजोल्यूशन जिसमें करोड़ों लोग देशवासियों का नुकसान हो रहा है या टैक्स बढ़ रहा है या हमारे माननीय पुराने प्रधानमंत्री ने एबॉर्शन का लॉ बना दिया था कि एबॉर्शन अभी कायदे से हो सकता है 1964 में, आज तक और इसके आगे कलयुग जब तक रहेगा तब तक लोग एबॉर्शन करते रहेंगे कायदे से, सारा बिल उन पर जाएगा। वो जीवित नहीं है, कहीं होंगे किसी जन्म में, पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन वो जो पाप है जो एक बिल पास करने से अनंत करोड़ लोग अनंत कर जन्मों तक करते रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये होता रहेगा, तो सारे पाप का जो हिसाब है उनको मिलेगा। तो कुंभीपाक में ऐसे लोग पहुंचते हैं जो छोटा काम करके इतना पाप होता है कि बहुत भयंकर होता है, छोटा सा, मोस्टली पॉलिटिशियंस, बिकॉज उनके हाथ में इतना अधिकार होता है उसका दुरुपयोग ही करते रहते वो, और अनंत लोग उससे पीड़ा प्राप्त करते हैं। अभी एक वो ब्रिज नहीं बन रहा तो कितने लोगों को कष्ट है, कहाँ कहाँ से जा रहे हैं वो, नंदगांव होकर जा रहे हैं, कोसी होकर जा रहे हैं, कभी इधर से गोवर्धन से जा रहे हैं लॉन्ग रूट में, और सालों सालों तक वो कष्ट उठा रहे हैं, एक कोई उधर पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगा उसका। तो ऐसे लोग है ना कुंभीपाक पहुँचते हैं, और कुंभीपाक में आपने गन्ने का देखा ना, अभी बहुत सारा गन्ना बहुत थोड़ा नहीं पिया लोगों ने, बेचारा गन्ना आपके लिए उसको पीसना पड़ता है खुद को, है ना, और वो कैसा है ना, वो गन्ने वाला कैसा करता है ना, पहले डालता है उसको, फिर वो और कम कर देता है उसको, जगह नैरो कर देता है, और फिर वो उसको फोल्ड करके फिर डालता है उसको, फिर वो और कम करता है जगह उसकी, एक बटन है उसको दबाता है और नीचे हो जाता है, फिर और 4 गुना फोल्ड करके फिर डालता है, उसका आखिरी बूंद तक उसको चूस लेता है पूरा, फिर कुछ नहीं बचता है तो गाय को फेंक देता है उसको रसहीन गन्ना। वैसे उस जीव को जो पापी जो वहाँ पहुँचता है उसको डाला जाता है मशीन से, और वो पूरा ना रसहीन लोके निकलता है, और बाहर निकलते ही वापस वैसे हो जाता है नॉर्मल, फिर उसको डालते हैं। गन्ना तो कम से कम रस खत्म होते होते फिर वो फेंक देते हो, आगे बंद हो जाता है उसका काम, लेकिन वो कुंभीपाक में ऐसा होता है जितने जितने आपके कर्म हैं उतनी बार आपको उधर डाला जाता है हमको। और मजे की बात यह है कि पूरा रस निकल जाता है फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वहाँ से इधर जाके वापस डालते हैं उसको, कितना कष्ट होता होगा जीवंत व्यक्ति को, और ये लंबे समय तक चलता है, जब तक आपका वो है ना टिक मार्क नहीं होता है कि भाई हो गया सब, वो कुंभी पाक है। एक मनवंतर काल तक वो कुंभी पाक में रहा, ऐसा वो बता रहे हैं। एक मनवंतर कितना होता है, इन्हें आइडिया? ब्रह्मा जी का जो 100 साल है ना, वो क्या बताएं आपको, 432 करोड़ का तो एक दिन होता है उनका, 12 घंटे होते, सॉरी 432 करोड़ 12 घंटे होते हैं, वैसी रात होती है उनकी, तो x2 एक दिन होता है, ऐसे 30 दिन, ऐसे 12 महीने का 1 साल, ऐसे 100 साल जीते वो। हाँ देखो आप गणित करो, पता चलेगा आपको इतनी लंबी आयु है। तो वो लंबी आयु 14 मनु के अंदर डिवाइड होती है, 14 मनु जो है वो 1/14 ऑफ 100 ईयर्स, यानी सो कॉल्ड 8.8 सो मेनी ईयर्स है ना, 100 को 14 से डिवाइड करके कितना हो गया, 14/7 = 98 ना, तो अराउंड 8 point something ब्रह्मा के साल, बहुत साल होते हैं, मैं आपको बताऊं कितने होते हैं, एक 71 दिव्य युगा, तो 71 × 43,000 = 20,000 एक युग जो होता है, एक दो दिव्य युग होता है ना कल्प, उसको कहते हैं 43,20,000 years। इससे सत्य त्रेता द्वापर कली बन जाता है। ऐसे 71 टाइम जब होता है तो वो एक मनु का काल होता है। तो अभी आप करिए उसको 43.20 lakhs, उसको 71 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना समय तक वो कुंभी पाक में रहा, और कुंभी पाक में भी दिन होता है, उसके भी 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे आपको खाली पीसना है, बस पीसते रहना है इतने साल तक। तो वो कह रहा है कि मैं इतना पाप किया तो एक मनमंत्र तक मैं कुंभी पाक में रहा, फिर एक कल्प यानी 43,20,000 years तक मैं तप्त सुरमी नरक में रहा, वहां पर ना वो फ्राई करते हैं तेल में जीव को जीवंत, तो हम लोग कैसे, कुछ लोग जिंदा मुर्गी को भी डाल लेते हैं, ब्रोस्टेड, व्हाट इज ब्रोस्टेड, लाइव मुर्गी को 300 डिग्री के तेल में डाल लेते हैं और उसको स्पेशल KFC करके बेच देते हैं, स्पेशल ब्रोस्टेड चिकन। तो वैसे एक कल्प तक वो जलता रहा तेल में, उसके बाद में 84 लाख योनि, एक साल हर योनि में रहा वो 84 लाख योनि। इसमें मेरे को वो हर एक योनि का समय पता नहीं है कि भाई कुत्ता कितने साल जीता है, गाय कितने साल जीती है, मच्छर कितने समय घंट कितने मिनट जीता है, कॉकरोच कितने, ये सब मुझे पता नहीं है, लेकिन 84 लाख योनि एक एक साल तक वो, एक एक साल पर योनि 84 लाख, वो कितना हो गया 84 lakhs of years हो गया। उसके बाद में एक जीवन वो होता ना जंगली असवल, क्या बोलते हैं उसको, जंगली बोर यानी क्या होता है, वराह, इज नॉट लाइक पिग व्हाट यू सी इन वृंदावन, वो बहुत भयंकर होता है, वो ना आदमी को ऐसा 4 आदमी को खा जाता है वो हिमालय में, मैंने देखा अभी मैं गया था हिमालय में, तो रात को एक बोर आया वाइल्ड बोर, और 3 आदमी को खा गया वो, खेत में आया और पहले गाय खा रहा था तो उसको रोकने गए, 3 आदमी को गाय को सबको खा गया वो एक रात में, वाइल्ड बोर होता है वो तो बहुत भयंकर होता है। तो एक लाइफ बोर का जिया उसने, पता नहीं कितने साल का होता है जंगल में बोर कितने साल जीता है, 100 जीवन शेर का जिया उसने, 100 lifetimes of tiger, 100 lifetimes of buffalo भैंसा, 1000 जीवन सांप का, और उसके बाद में 1000 ऐसे सब मिलके यहाँ पर लिखा है गर्ग संहिता में कि टोटल मिलके 10,000 साल हो गए, एक लाइफ बोर का, 100 lifetimes tiger का, 100 lifetimes buffalo का, 1000 lifetimes snake का, मिलकर 10,000 साल तक ये 4 योनि में घूमता रहा वो दुख भोगते हुए, और फिर महाखल विकराल राक्षस बन गया वो। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका एक पर्पज़ है, बताऊँगा क्यों सब बता रहा हूँ, इतना विस्तार में मैंने इसका रिसर्च किया और वो पेपर में लिखा कि इतने कितने साल होते हैं। उसके बाद में वो जल रहित जंगल में राक्षस बन के ब्रज के बाहर जस्ट बाहर रहने लगा, वहाँ पर पानी भी नहीं है, भोजन भी नहीं, कुछ नहीं, भूखा भूखा ही रहा, और वो ब्रज में जाने का प्रयास किया उसने कुछ खाने पीने के लिए, तो ब्रजवासियों ने उसको पीट पीट कर भगा दिया। तो मैंने यहाँ पर गिनती किया पूरा, करीब करीब 32 करोड़ साल होते हैं टोटल ये सब, प्लस द लाइफ टाइम्स ऑफ बोर बफेलो वगैरह वगैरह, वो एक्स्ट्रा है उसके अंदर। ये सब क्यों हुआ? एक मनुष्य जीवन में उसने पाप किए, उसका परिणाम स्वरूप उसको इतने लाखों जन्म लेने पड़े भोग लेने के लिए। तो जो लोग मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, वेश्यागमन करते हैं, झूठ बोलते हैं, खून करते हैं, आग लगाते हैं, विश्वासघात करते हैं, कितने जन्म तक वो भोगते रहेंगे इसको? क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सत्कार्य में, सत्कर्म में, सद उद्देश्य में लगाया तो वो आपको भगवत धाम पहुंचा देगा। लेकिन वो दिया हुआ अति मूल्यवान मनुष्य जीवन अगर आपने गलत काम में लगाया तो आपके सामने रिजल्ट हाजिर है। शास्त्र में क्यों सब दिया इतना डिटेल में? ताकि हम लोग डरे उसको देखकर, इसमें से कोई काम करने के लिए डरे हम लोग। जैसे कि हम लोग किसी का खून नहीं करेंगे, अभी मोस्टली फांसी लगाकर इसका उसका क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य का खून नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मांसाहार जरूर करेंगे स्वार्थ के लिए। कभी शराब पी सकते हैं, कभी वेश्यागमन कर सकते हैं, कभी परस्त्री के साथ संबंध कर सकते हैं, कभी नशा कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए तो कुछ नशा कर सकते हैं, या कभी झूठ बोल सकते हैं, या कभी किसी का नुकसान कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो एकदम लगता नहीं एकदम महत पाप है, लेकिन वो महत पाप में आता है। और वो हर एक पाप की गिनती करते हैं, उनको हर एक पाप का एक हिसाब है कि ये पाप किया तो एक बार किया तो इतना है, दो बार किया तो इतना है, तीन बार किया तो इतना है, 50 बार किया तो 50 बार का इतना है, ऐसा पूरा अकाउंट रखा जाता है हर पाप का। नशे का अलग, व्याभिचार का अलग, जुआ का अलग, मांसाहार का अलग, झूठ बोलने का अलग, सबका अलग अलग हिसाब होता है और उसका इक्वल टू आगे पनिशमेंट लिखा होता है। और जब जीवन समाप्त होता है तो ये सारा हिसाब किताब यमराज के दरबार में पढ़ा जाता है, और फिर उसको भोगने के लिए यमराज तय करते हैं, चलो पहले इसको ये नरक में भेजो, ये पनिशमेंट पूरा करो, इसके बाद में यहाँ भेजो, उसके बाद यहाँ भेजो, उसके बाद में पृथ्वी पर आकर कुत्ता बना दो, उसके ऊपर पृथ्वी में मच्छर बना दो, फिर देवता में जाकर, ऐसे सब कुछ होता है उसके अंदर। और एक मनुष्य जन्म के पाप के कारण अनेक हजारों जन्मों तक मनुष्य दुख भोग सकता है। मनुष्य जन्म पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरह से पावरफुल है। और पॉजिटिवली अगर आप भजन करते हो भगवान का, तो एक जन्म में सारा ये हिसाब किताब नष्ट होकर भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो ये जो राक्षस था, इसने गोवर्धन की महिमा बताई, वो अभी आप सुनिए। गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरिही, तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थ ताम, कृतार्थ यातम, कृतार्थ ताम। गिरिराज साक्षात हरि के अंग हैं। गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो हरि ही गिरि ही, इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। दर्शन, स्पर्श, स्मरण, चिंतन, सेवन, इन सब माध्यम से मनुष्य जो है तत्काल सारे पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। इसलिए जब भी हम गिरिराज के पास जाएंगे, परिक्रमा करने जाएंगे, नहीं जाएंगे कुछ समय के लिए जाएंगे, केवल पास हो रहे हैं, तो जरूर गिरिराज की शिला को आपको स्पर्श करना है। निश्चित रूप से आपको अपने शरीर के अंग से गिरिराज को स्पर्श करना है। तो हम लोग ने क्या किया, गिरिराज को उठाया, उस शिला को छोटी सी को छाती पे लगाया, प्रार्थना किया, सर पे लगाया, फिर रख दिया उसको प्रेम से। उसको फेंकना नहीं है, उसको रखना है, जहाँ पर निकाला वहाँ से रखना है, क्योंकि गिरिराज में इतनी शक्ति है। वो कितने भी भयंकर पापी, देखो इतना सारा पाप किया उसने, अभी भी अगर वो ब्राह्मण ने अगर उसको मुलाकात नहीं होती, पत्थर नहीं स्पर्श होता, तो और भी कष्ट भोगते रहता हूँ। उसके दुख भोगने के सिलसिले में खंड आ गया केवल गिरिराज का स्पर्श होने से। आगे कहा है, गिरिराजम समम तीर्थ न भूतम न भविष्यति। शास्त्र में लिखा है कि गिरिराज के समान पावरफुल तीर्थ और कोई नहीं है विश्व में। द हाइएस्ट मोस्ट अबोड ऑफ स्पिरिचुअलिटी श्राद्ध कुंड और श्याम कुंड है, वो गिरिराज से कम नहीं, गिरिराज उससे कम नहीं है। देखो अभी आगे सुनिए, ऋष्य मुखस्य संयस्य तथा देवगिरे गृहे पुनः यात्रायाम लभते पुण्यम समस्ताया भुवः फलम। अतः इसका पहले अर्थ बताता हूँ। ऋष्यमुख पर्वत, सह्याद्री पर्वत, ये सब पवित्र पर्वत हैं, हिमालय पर्वत, इनके प्रदक्षिणा करना और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना बहुत पवित्र माना गया है। जैसे कामतगिरी की परिक्रमा करना उधर चित्रकूट में, कामतगिरी है ये, वो गिरिराज से भी बड़ा परिक्रमा है उसका, कई दिन लगते हैं उसको पूरा करने के लिए, लोग जाते हैं कामतगिरी की परिक्रमा करने के लिए, नर्मदा और कामतगिरी दोनों कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर आपने ऋष्यमुख पर्वत जो साउथ इंडिया में है ना, जहाँ पर अपने सुग्रीव जी रहते थे वानरों को लेकर बलि के डर से, बाली के डर से, तो वो पर्वत पवित्र पर्वत है, उनकी परिक्रमा करेंगे, सह्याद्रि की परिक्रमा करेंगे, अगर हिमालय की परिक्रमा करें उसको भूल जाओ, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और उसको 1 कोटि से मल्टीप्लाई करेंगे, वो लाभ गिरिराज परिक्रमा से होता है। देखो गिरिराजस्य यात्रायाम तस्मात कोटि गुणम फलम गिरिराज समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति, जो पहला वाक्य है वो इसी का एंड है एक्चुअली। तो आप आज आपने जो किया हुआ है ना, समझ में आया ना आपको क्या किया आपने आज? कभी कभी हमको समझता नहीं, हमको लगा कि हमने 22 किलोमीटर का एक एक्सरसाइज कर लिया आज, मैराथन कर लिया। वो सब हमारे कॉलेज के लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, मिनी मैराथन, हाफ मैराथन पूरा कर दिया, अभी बड़ा 60 ईयर्स पे हाफ पूरा कर दिया, उसका फोटो आता है टी शर्ट में, क्या लाभ है उसका? मृत्यु वैसे भी आने वाली है, मैराथन करने से कोई पुण्य का बढ़ने वाला नहीं है उसके अंदर। गिरिराज के अराउंड अगर आप एथलेटिक्स जो भी कुछ करेंगे तो आपको इस जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। क्या बताऊँ आपको, ऐसे इतने सारे ब्रिजवासी यहाँ पर हैं, वृंदावन में रहने वाले, लोही बाजार में बिजनेस करने वाले, दिन भर ऐसा कर्रा बिजनेस करेंगे ना, आपको लगेगा अरे क्या ब्रिजवासी है ये, एक रुपया कम नहीं करता है, डिस्काउंट देता नहीं है, पूरा कठोर बिजनेस है मानी। वही बिजनेसमैन ब्रिजवासी हर रोज कई दुकान, हर व्यक्ति नहीं है लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं करोड़ों रुपये का बिजनेस करते हैं, रोज सवेरे 6 बजे निकलते हैं मोटरसाइकिल से, और वो मोटरसाइकिल से यहाँ पर बिल्कुल ना 28 मिनट में पहुँच जाते हैं, 28 मिनट में गोवर्धन पहुँच जाते हैं, एक जगह फिक्स जगह पर मोटरसाइकिल रखते हैं। और ना आपने वो देखा है वॉकिंग मैराथन, देखा है वॉकिंग मैराथन, वो ना चल रहे हैं ना दौड़ रहे हैं, बीच में कुछ कर रहे हैं, पता है आपको, ऐसे ऐसे चलते ना, दे आर नॉट वॉकिंग लाइक यू बट दे आर नॉट रनिंग ऑल्सो, अजीब प्रकार से चलते हैं वो, वैसे वो परिक्रमा करते हैं 3 घंटे में, लौट के आते हैं, पार्क गाड़ी लेते हैं, फुर्र करके घर पे आते हैं, नाश्ता करके दुकान में बैठ जाते हैं। रोज गोवर्धन के साधु हैं, वो कुछ साधु ऐसे हैं वो दौड़ के परिक्रमा करते हैं रोज, लिटरल रनिंग, नॉट लाइक हाई स्पीड रनिंग बट द एक्चुअल रन। आज भी मैंने कई लोगों को देखा ऐसे भागते रहते, पूरा ऐसे पतले साधु रहते हैं, दाढ़ी वाले बुजुर्ग रहते हैं, दौड़ के करते हैं, रोज करते हैं। हमारे सनातन गोस्वामी भी रोज परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, तो ये सब इम्पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली जब हमारी परिक्रमा समाप्त हुई ना तो ऐसा लग रहा था कि विल स्टार्ट अगेन, लेट अस स्टार्ट अगेन। और कुछ लोग करते भी हैं 6 to 10 आधा घंटा ब्रेक, 10:30 to 4:30 सेकेंड परिक्रमा कर लेते हैं, ये सब पॉसिबल है, लेकिन वो फिजिकल एक्सरसाइज के भाव में नहीं करना चाहिए उसको, कि हम लोग ने हर किलोमीटर टास्क है, अभी देखो ये भी कर लिया, 44 किलोमीटर हो गया हमारा, भक्ति भाव से करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं देखते हैं गोवर्धन में, भगवान आपका भक्ति देखते हैं, आपका कितना भाव है, कितना चरणों का पूजन करने का भाव है, कितना भगवत भाव है, कितना सेवा भाव है, कितना गर्वहीन भावना से आप कर रहे हैं कि देखो मैं चल रहा हूँ, देखो ये थक रहा है, ये थक रहा है, देखो ये तो सो रहा है, तो रिक्शा से जा रहा है, मैं अभी भी चल रहा हूँ, ये भाव से नहीं करना है, सेवा भाव से करना है। क्योंकि जब तो हम कब से कर रहे हैं लेकिन अभी भी अश्रु नहीं आ रहे, रोमांच नहीं हो रहा है, क्यों? अभी तक वो पवित्र भाव जो पवित्रोत्तम भाव जो वो निर्माण नहीं हुआ है। वो पवित्रोत्तम भाव निर्माण करने के लिए हम जन्म भर जप करते हैं कि एक दिन भी वो भाव आएगा तो भाव आते ही भगवान हमको अपने पास बुला लेंगे तुरंत ही। साधना इज जस्ट मेंट टू रीच दैट कल्बिनेशन एक दिन। तो गिरिराज का भी परिक्रमा वही है, आपको शुद्ध भक्ति भाव से, निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, नम्रता से पूर्ण होकर उसको करना है, गिरिराज जी को भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो गिरिराज परिक्रमा एक भी आपकी होगी तो वो भगवत धाम को ले जाएगा। ऐसा ये गिरिराज की महिमा का कहानी गर्ग संहिता में आती है, और आदिवारायण में ऐसा कहा है स्पृश्यति आदिपुराण, आपको बताया ना आदिपुराण, आदिवारा पुराण, जब वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का वध करने के बाद में थक गए वो, भगवान थकते नहीं वैसे, लेकिन उसका सुंदर विवरण साधुओं ने दिया है। उधर एक तीर्थ है गताश्रम तीर्थ, 24 तीर्थ है ना जमुना जी के, जमुना जी में 24 तीर्थ है, मथुरा में ध्रुव तीर्थ है, बहुत सारे अम्बरीश तीर्थ है, दुर्वासा तीर्थ है, और पूरे नाम लिखा है इसके अंदर, दिखाता हूँ आपको मैं। अविमुक्त तीर्थ है, अधिरूढ़ तीर्थ, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल तीर्थ, तिंडुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, वटस्वामी, ध्रुव घाट जहाँ पर ध्रुव ने तपस्या किया, मतलब स्नान करके गए, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुद्ध तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, कृष्ण गंगा, वैकुंठ, असी कुंड, चतुः सामुद्रिक कूप, अक्रूर घाट, ये भी एक 24 में से है, याज्ञिक विप्रस्थान जहाँ पर यज्ञस्थली हम कहते हैं, वो भी एक तीर्थ है यमुना के ऊपर, कुब्जा कूप जहाँ पर कुब्जा रहती थी, रंगस्थल जहाँ पर रंगभूमि कंस का वध किया गया, मंचस्थल, मल्ल युद्ध स्थान, दशाश्वमेध घाट, ऐसे 24 घाट है यमुना जी के ऊपर। ये बात कहाँ से निकली? हाँ, आदिवारा पुराण, करेक्ट, गुड। तो उसमें से एक स्थान है विश्राम घाट, और उसका एक नाम भी है गताश्रम तीर्थ, कि भगवान अपने श्रम से परिहारित हो गए वहाँ पर, मतलब उनका श्रम जो है वो गया। अभी प्रश्न आता है कि भगवान को श्रम कैसा है? भगवान को श्रम नहीं होना चाहिए, तो उसका आचार्यों ने ऐसा अर्थ दिया है कि भगवान ने यहाँ पर आकर विश्राम किया क्योंकि भक्तों ने अपने आप को विश्रांत पाया, कि भी दास का बोध होगा, वेट छूट गए, डिवोटीज बिकेम रिलीव्ड गताश्रम, वो भक्तों के मन में जो चिंता थी, श्रम था, उसका परिहार हो गया भगवान ने वराहदेव का वध करने के बाद। वैसे उसी तीर्थ पे आकर कृष्ण ने भी विश्राम किया है कंस को मारने के बाद, तो वो भी नाम उसको दिया है गताश्रम तीर्थ। बोले कृष्ण का कैसा, कृष्ण को कैसा श्रम हो गया उसमें? उसने तो कुछ नहीं किया, खेलते खेलते उनको लीलाया, मतलब आसानी से उनको मार दिया। तो श्रम किसका परिहार हुआ? भक्तों का। तो इतने साल से भक्त परेशान थे, उनका श्रम परिहार हुआ, इसलिए भगवान भी खुश हो गए कि मेरे भक्तों का श्रम परिहार हो गया, गताश्रम तीर्थ। तो वैसे अभी फरमा रहे, विश्राम फरमा रहे हमारे वराहदेव, तो पृथ्वी देवी ना आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि तो भगवान ने उनको उठाया गर्भोदय सागर से और अपने सिंहों को उठा के ले जा रहे हैं, तो पृथ्वी पूछ रही कहाँ रखोगे मुझे आप? तो देखो दिख रहे हैं आपको हरियाली, वहाँ रखूँगा आपको। तो उनको लगा हरियाली तो केवल मेरे में होनी चाहिए, मैं तो धरा हूँ ना, धारण धारयती इति धरा, धारण करने की शक्ति मुझ में है, तो मैं ही धारण करती हूँ, तो पेड़ वेड़ जो हरियाली सब मैं धारण करती हूँ, मुझ में ही होता है, या और सी कौन सी हरियाली है जिसमें मुझे आप रखने वाले हो? तो भगवान कुछ बोलते नहीं, मैं तो बता दूंगा आपको। तो उनको रखते हैं, तब पृथ्वी देवी रूप लेकर उधर गताश्रम तीर्थ विश्राम घाट पे आती है और पूछते हैं कि मुझे बताइए आप उसके बारे में, इस धाम का महिमा क्या है जो मुझे पता नहीं है। तब भगवान ने वहाँ बैठकर पूरा ब्रज का महिमा जो है कथा के साथ, स्पॉट के साथ बताया हुआ है। इतनी अजीब अजीब कहानियाँ आदिवारा पुराण में है, अभी अवेलेबल भी नहीं है वो, वराह पुराण अवेलेबल है लेकिन आदिवारा पुराण अवेलेबल नहीं है। मैंने कितनी बार इंक्वायरी किया है, लेकिन भगवान की दया से मेरे पास एक थोड़ा सा ग्रंथ है जो मैंने काम्यवन में एक साधु से प्राप्त किया था। कई अद्भुत कहानी उसके अंदर है, पौराणिक कहानी जो स्वयं वराहदेव भूमि को बता रहे हैं, हर एक स्थान की लीला बता रहे हैं उसमें। तो उसमें लिखा है स्पृश्यति यदि कच्छाद्रि श्रद्धया हेलया वा सुकृत अपि गिरिराजस्य क मूर्तिम क्वचिद यः द्विज सुर नर घाति तस्करो वांत काले व्रजति स हरिलोकम श्रेष्ठ दासत्व भाव्यः। यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से या अश्रद्धा पूर्वक श्री गिरिराज को स्पर्श करता है तो वो ब्रह्म हत्यारा भी होगा, देव हत्यारा होगा, नरघाती होगा, तो भी प्रभु के नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है, प्रभु के नित्य धाम हरिलोक को प्राप्त हो जाता है। व्रजति यानी जाता है स हरिलोकम, शक्ति है श्री गिरिराज में जिसके आज हमने परिक्रमा दी है। और साधु लोग बताते हैं कि गिरिराज जो है वो प्रिया प्रीतम की प्रीति प्रतिमा है। एक थोड़ा काव्यात्मक बताते हैं जो मैंने पहले बताया आपको, कृष्ण का जो राधा रानी को प्रेम है उसका प्रतीक गिरिराज है, यानी प्रिया राधा रानी प्रीतम कृष्ण इनके प्रेम का प्रतीक है ये साक्षात। प्रेम जैसा नहीं है, साक्षात प्रेम है। जैसे रासलीला में कहते हैं कि गोपियां स्वयं प्रेम हो गई, वो प्रेम पहले कर रही थी लेकिन रास में वो स्वयं प्रेम का स्वरूप बन गई, दे बिकेम लव पर्सोनिफाइड, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। पहले हम प्रेम करते हैं बाद में खुद प्रेम बन जाते हैं, तो वैसे गिरिराज वो प्रेम का ही स्वरूप है और कैसे पराकाष्ठा स्वरूप है, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम स्वरूप जो गोपियां हैं वो उनको हरिदास वर्य मानती है, उनके ही ऊपर से भी श्रेष्ठ है वो, ऐसे गिरिराज की महिमा है। तो भगवान ने फिर गिरिराज के अंतर्गत अपनी बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को संपन्न किया, उसमें कई ऐसे आचार्य हैं। हाँ, ऐसा मत समझना कभी भी, वो संकीर्णता मन में मत रखना कि हम गौड़ीय संप्रदाय के हैं तो उनको इतना ही पता है, बाकी पता नहीं कुछ, बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं, या हमारा ही खाली है बाकी सब कुछ, क्या कहते हैं उसको, अनबोनाफाइड है। जैसे कि मैं JMC जिससे हूँ, JJ हॉस्पिटल से MBBS बना हूँ, मतलब बाकी को कॉलेज में कोई अर्थ ही नहीं है, ऑल यूजलेस कॉलेजेस, ऐसा नहीं होता है। वहाँ से भी लोग MBBS करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने कॉलेज पर गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन अपना ही कॉलेज है और कोई कॉलेज नहीं है सोचना गलत है। तो अपना संप्रदाय पर हमको कट्टर गर्व होना चाहिए, लेकिन केवल अपना ही संप्रदाय है और बाकी सब तुच्छ है, कोई है ही नहीं या तुच्छ है, ये समझना गलत है। जैसे हमारे जो आचार्य हैं छह गोस्वामी, वो जब प्रकट हुए यहाँ पर और उनको भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज में भेजा, तो उन्होंने ब्रज के दक्षिण भाग को पूरा पुनरुज्जीवित किया है। गोवर्धन से दक्षिण में वृंदावन है, वृंदावन के आगे ही मथुरा है, मथुरा से आगे द्वारका, दाऊ जी हैं, गोकुल है। इस भाग में हमारे गोस्वामी लोगों ने, षड गोस्वामियों ने सब स्थान प्रकट किए हैं, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, रमण जी, सब जितने भी ठाकुर हैं सब सारे धामों का उद्धार उन्होंने किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नारायण भट्ट गोस्वामी उसी टाइम पे हुए, उसी समय वल्लभाचार्य हुए, उसी समय हरिराम व्यास जी हुए, उसी समय भगवान के बंसी के अवतार हरिवंश जी हुए, उसी समय ललिता के अवतार स्वामी हरिदास जी हुए, बांके बिहारी जी के, वो सब कंटेम्प्रेरीज है और उनकी मुलाकातें भी हुई है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं, नवद्वीप में मिले हैं, यहाँ पर भी मिले हैं, चैतन्य महाप्रभु निम्बार्काचार्य से मिले हैं, मध्वाचार्य से मिले हैं, रामानुजाचार्य से मिले हैं, सभी आचार्यों से चैतन्य महाप्रभु का संपर्क हुआ है। और वे आचार्य भी एक दूसरे को मिलते रहते थे, हमारे छह गोस्वामी उनको मिले हुए हैं, खाली हमारे अंदर वो एक संकीर्णता है कि हमारा ही सब कुछ बेस्ट है, उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था उस समय। तो नारायण भट्ट गोस्वामी नारद मुनि के अवतार हुए हैं ऊंचे गांव में, कहां पर, बरसाना का आगे जो 4 किलोमीटर गांव है, ऊंचा गांव, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है, वो नारद मुनि के अवतार थे। और उन्होंने क्या कहे आपको, उन्होंने दीक्षा लिया किससे, सनातन गोस्वामी के शिष्य से, श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी से। राधारण ने स्वप्न देकर उनको आदेश दिया कि जाओ राधा कुंड पे, अभी वो मदन मोहन जी जो है वो सब मुसलमानों के आतंक से वहाँ पर विस्थापित हो गए, वृंदावन छोड़ के सब राधा कुंड में रह रहे हैं, सारे विग्रह मदन मोहन जी में वहाँ निवास कर रहे हैं, तो आप सनातन गोस्वामी के शिष्य श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी से मिलिए और उनसे अनुग्रह लीजिए। नारायण भट्ट गोस्वामी वहाँ से निकले हैं, राधा कुंड गए हैं और दोपहर के समय जब पहुँचे तो दर्शन बंद हो चुका था, फिर भी मदन मोहन जी अपने आप खुल गए नारायण भट्ट गोस्वामी को दर्शन देने के लिए और वार्ता करने लगे उनसे। वो आवाज़ से श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी उठ गए, बोले कौन भगवान से बात कर रहे हैं, देखा तो भगवान ने पट खोल के स्वयं संवाद कर रहे हैं नारायण भट्ट से। और फिर नारायण भट्ट का दर्शन, नारायण भट्ट को श्री कृष्ण ब्रह्मचारी का दर्शन प्राप्त हुआ, उनके चरणों में गिर गए और राधारानी का आदेश सुनाया, तो वहाँ उनसे उन्होंने उपदेश लिया है। अब वहाँ से आदेश लेकर राधारानी का विग्रह प्रकट किया उन्होंने, तो मैंने आपको जगह दिखाया ना पेड़ के पास, गुस्वप्न आया वहाँ पर, कहते हैं कि वो प्रकट करने के बाद में वो विग्रह लेकर उधर राधा कुंड में गए थे और फिर इनसे अनुग्रह लेके उनका उपदेश लेके फिर भानुगढ़ पे राधा रानी के विग्रह को स्थापन किया उन्होंने। और उसके बाद में जो बरसाना, नंदगांव, ऊंचा गांव जितने भी क्षेत्र हैं वो सबके विग्रह, सबके वन, सबके जो वन का, वृंदावन का जो उद्धार है उन्होंने किया हुआ है, जितने भी उत्तर दिशा में स्थान है वो सब उन्होंने प्रकट किए हैं। यहाँ तक कि ब्रज में जो रास लीला करने की प्रक्रिया है, एक बड़ा सुंदर कल्चर है भगवान का लीलाओं का मंचन करना, यानी लाइक आप लोग कैसे पुणे में मुंबई में ड्रामा करते हैं ना, उसको मंचन कहते हैं, लीलाओं को मंच में प्रस्तुत करते हैं तो उसको मंचन कहते हैं। तो वो ड्रामा प्रस्तुत करने की जो प्रथा है वो उन्होंने स्थापन की है, जिसको ब्रज में रासलीला कहते हैं। उसका मतलब डांस नहीं, खाली सारी कृष्ण की लीलाएं, ग्वाल बाल की लीलाएं, सबको रासलीला कहते हैं। वो स्टेज पर उसको 8-8 घंटे बनाते हैं, उसको चलाते हैं, कभी आती है मंडली 8 दिन करते हैं, हर दिन 8 घंटा ड्रामा करते हैं कंटिन्यूस एवरी सिंगल डे विदाउट एनी मिस्टेक एनी फ्लॉ बोलो। तो वो जो पद्धति है रासमंडल रासलीला करने की, बड़े बड़े यहाँ पर रासलीला करने वाले आचार्य हैं, फतेह कृष्ण जी, और गौरलीला भी करते हैं, रामलीला भी करते हैं, कृष्णलीला भी करते हैं, सब करते हैं 8-8 10-10 दिन तक किसी किसी उत्सव समय। और वे कलात्मक रीति से, संगीतिक रीति से, रागदारी के साथ करते हैं। उनका स्थापना उन्होंने किया है नारायण भट्ट गोस्वामी ने। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि हमको ना ओवरऑल पिक्चर सबका पता होना चाहिए, अपने घोड़े जैसे छापड़ लगा के आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सत्य बहुत विशाल है, वो केवल सीमित नहीं आपके दृष्टि के वजह से, दृष्टि सीमित होने से सत्य सीमित नहीं होता है, सत्य असीम है। हमारी दृष्टि हमको थोड़ा विकसित करना चाहिए तो हमको सब कुछ समझ में आएगा, तो हम सब चीज़ को अपने अपने जगह पर अच्छी तरह देख सकते हैं। हम कहेंगे कि भाई राधा गोपीनाथ मंदिर के ही डिवोटीज है, बाकी सब कोई डिवोटी है ही नहीं, तो इससे आपको बाकी लोगों का गौरव नहीं पता चलेगा, अपने ही धुनके में रहेंगे हम। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि वल्लभाचार्य जी को कई दिन समाधि लगती थी, कई दिन तक, तो उसमें हर दिन वो अपनी समाधि में अलग अलग लीलाओं का दर्शन करने के लिए आत्मरूप से पहुंच जाते थे। तो गिरिराज के कंदराओं में, गुफा में राधा और कृष्ण रैन बसेरा कर रहे हैं, रात की लीला कर रहे हैं, पूरे लीलाओं का दर्शन उन्होंने किया अपनी समाधि में, और फिर सुबह उठकर उनको क्या कहते हैं उसको, भूपाली राग में उठाकर गोपियाँ उनको भी विदा कर रही हैं और दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं। यहाँ तक की लीला का उन्होंने दर्शन किया है, और सब अभंग क्या कहते हैं अभंग नहीं भजन के रूप में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये भागवत में नहीं है, तो आपने कहा ये भागवत नहीं तो मैं मानता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि भागवत इज अ टॉप मोस्ट लिटरेचर, इसका अर्थ नहीं कि भागवत के अलावा कुछ है ही नहीं, पद्म पुराण है ही नहीं, स्कंद पुराण है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना, उनका भी अपना स्थान है, अपनी जगह है। व्यासदेव ने उनको लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि और किसी ने लिखा हुआ है, व्यासदेव ने स्वयं 18 पुराण लिखे हुए हैं, 108 उपनिषद लिखे हुए हैं, इतिहास लिखा है, आरण्यक लिखा है, सब कुछ लिखा है उन्होंने, पूरा नॉलेज नाम का जो चीज़ है वेद नॉलेज वो सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, सबका अपना अपना स्थान है, और वेदव्यास के द्वारा रचित है वो, तो बोनाफाइड भी है वो। तो ये गिरिराज के अंदर की बहुत लीलाओं का वर्णन जो है बहुत सारे अन्य संप्रदायों के आचार्य में आचार्यों ने किया हुआ है, और कैसे किया हुआ है कि हम कैसे अभी कोई कवि है जो दुनिया में तो कैसे करके वो राइम करके कविता बनाते हैं, उसमें कोई उत्स्फूर्तता होती है, बहुत सारे कवि पुराने हुआ करते थे वो, हमारे रूप गोस्वामी और सुखदेव जी वो सब जो स्वयं रचित जो कृष्णदास कविराज जी उनका कवित्व देखेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे, भागवत का जो छंद देखेंगे संस्कृत से पढ़ाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इतना श्रेष्ठ वांग्मयीन लिटरेचर है ये। तो वो सारे जितने आचार्य थे वो सब लीलाओं को दृष्टांत में देखते थे, खुद दर्शन करते थे, और जो देखा हुआ है उसको उत्स्फूर्त कवि कवित्व के रूप में प्रकट करते थे, काव्य के रूप में। तो जितने भी ये संतों ने लिखा हुआ है वो सब उन्होंने देखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, कपोल कल्पित नहीं है वो, इट्स नॉट इमेजिनरी। अगर भागवत में समझो राधा रानी की मान लीला का वर्णन ही नहीं है तो इसका अर्थ ये होता ना कि मान लीला हुई नहीं, वो तो राधा रानी का नाम ही नहीं ले पाए बेचारे, क्योंकि उनकी ऐसी भाव की अवस्था थी कि वो नाम लेते शांड मासिनी मूर्छा होने की संभावना थी, उनको खुद को पता था, अभी वो जो बता नहीं पाए भाव के वजह से, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हुआ ही नहीं या होता ही नहीं। वो जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में लिखा हुआ है, वो भी दर्शन कर किया था उन्होंने, जो देख रहे थे उनको कि राधा रानी के चरणों में कृष्ण गिर रहे हैं, और उनको वो एक अजीब लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो दिमाग उनका गर्म हो गया, उष्ण हो गया, इसलिए गंगा जी में ठंडा करने के लिए स्नान करने गए, वो भगवान ने आके उसको पूरा किया। तो वो जो लीला है मान लीला जो मैंने आपको वहाँ बताई थी संक्षेप में, वो पूरी गीत गोविंद ने लिखी हुई है, विस्तार पूर्वक दर्शन किया है, तो भी सत्य है, तो गीत गोविंद में लिखा हुआ है, गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज ने लीलाएं लिखी हुई है, हाँ चेतन रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी ने दान के ऊपर लीलाएं लिखी हुई है, वो कहीं भागवत में तो है नहीं, लेकिन सब जगह सब बोनाफाइड लीलाएं हैं। और कितने ऐसे चैतन्य महाप्रभु के विषय में कितने 5 और 6 प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं महाप्रभु के जीवन में, जो अलग अलग लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो एक ही चैतन्य चरितामृत नहीं है, चैतन्य चरितावली है, चैतन्य चंद्रामृत है, शिक्षामृत है, कितने सारे ग्रंथ हैं जो महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करते हैं अलग अलग आचार्यों के द्वारा। तो मति हमारी विस्तारित होनी चाहिए टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टोटैलिटी। तो ऐसे गिरिराज के अंदर जितनी भी लीलाएं हुई है, इसमें दान निवर्तन कुंड की लीलाएं फॉर एग्जाम्पल किसी किसी स्क्रिप्चर में दी हुई है कि भगवान ने उनको रोका, फिर गोपियों ने उनको झपटा, फिर वो बोला कल आ जाओ गोपी बन के, फिर उनको गोपी बन के मटका फोड़ा, फिर वहाँ ने दान निवर्तन कुंड पे आके सब लीला हुई और भगवान ने उनके चरणों में अपना शीश रखा, फिर दान निवर्तन कुंड की लीलाएं। ये सब उत्कट लीलाएं हैं, इसके बीच में कहीं भी राक्षसों का आतंक नहीं। देखो आप, मेरे नॉलेज के अनुसार अरिष्टासुर के अलावा कोई राक्षस का वहां पर वध नहीं हुआ है गोवर्धन में, प्रेम की लीलाएं हुई है हमेशा। इज दैट राइट? प्रधान लीला राक्षस वध की अरिष्टासुर की है, वो भी ऐसी सुंदर लीला है कि राधा कुंड श्याम कुंड के निर्माण हुआ उधर उसकी वजह से, है ना, वो भी आपको बता देते, जरूरी था बताना। तो राधा कुंड और श्याम कुंड, अभी वो भी थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मुझे गिरिराज का भी थोड़ा वर्णन करना है लीला का। तो शाम का समय था और गोवर्धन भगवान का प्रिय स्थली है रास रचाने के लिए, वो कहते पूर्णिमा का चंद्र था उस समय और भगवान रास के भाव में आ गए, मुरली बजाने लगे, उतने में ही आतंकवादी आवाज आने लगे, लोगों की चीख पुकार और ध्वस्त होने की ध्वनि और भयंकर ध्वनियाँ होने लगी। तो वो बैल जो है जिसके सिंग और जिसका जो वशिंड था, जिसकी पूंछ बादलों में थी, ऐसा भयंकर बैल था, वो हवा की गति से दौड़ कर आ रहा था और उसके पैर जो है ना, चार पैर जहाँ पर भूमि में पड़ते थे ना, भूमि में घुस जाते थे और नीचे के जल के स्रोत को फुव्वारे की तरह उड़ाते थे एक एक पैर। तो चार पैर उसने कितने बार डाले होंगे आने के समय, उतने फव्वारे पृथ्वी के नीचे से हवा में उड़ रहे थे और उसने इतना मल और इतना मूत्र बहाया कि नदियां मूत्र की और पर्वत मल के बने उधर गोवर्धन के आसपास, यानी कि बदबू और क्या कहते हैं घृणास्पद वातावरण। ऊपर से जब उसके नाक से हवा बह रही थी ना, भागता था ना वो, श्वासोच्छ्वास उसका होता था ना, तो हरिकेन जैसे पेड़ गिर रहे थे उससे, और ध्वनि गर्जना अलग, भय निर्माण किया अलग, कई औरतों का गोपियों का अभर्षण हो गया उसमें, गर्भपात हो गया, पेड़ों को लिपट लिपट के चिल्लाते रहिए और बच्चे नष्ट होते रहे उनके, ऐसा भयंकर आतंक उत्पन्न करके अरिष्टासुर वहां पर आया बैल। फिर भगवान ने उसका वध कर दिया, उसका भी लंबा डिटेल वर्णन है, आकाश में थल में जमीन में गोवर्धन को उठाते हुए भगवान ने उसका सिंह तोड़ दिए, उसके बॉडी में घुसा दिए और बहुत भयंकर युद्ध हुआ उनका अरिष्टासुर का, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। फिर भगवान ऐड से आए, मैंने इतना बड़ा काम किया, तो गोपियों ने कहा हम आपसे नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि अपने गोवंश की हत्या की है। तो भगवान समझा रहे हैं, अरे वो बैल था, राक्षस था, बैल है मानता हूँ मैं, लेकिन राक्षस था वो, सब कुछ नष्ट करने के लिए आया था, आपने देखा ना उसका परिणाम क्या हुआ, हो रहा सब कुछ ठीक है लेकिन हम लोग नहीं मानते। तो भगवान अभी सहन नहीं कर सकते, गोपियाँ मुझसे नहीं मिलेंगी। बचपन में भी जब ग्वाल बाल छोटे से ही उनके साथ गोटी खेलते थे ना, तो गोटी के खेल में कृष्ण हारने को आते थे और उसी समय रोहिणी मैया बुलाने को आती थी, तो ये देखते भी नहीं थे कोई हार रहा हूँ, तो रोहिणी कहती है मेरी सुनती नहीं है, यशोदा को बुलाती है, दीदी मेरी नहीं सुनते, आप ही आ जाओ। तो आके चलो, हे स्ट्रीट बॉय, सड़क छाप, चलो घर पे, तो तुरंत उठ के भागते थे। तो ग्वाल बाल क्या कहते थे, हारते हुए जा रहे हो भाग के, कल खेल में नहीं लेंगे आपको, दोबारा बैठ जाते हैं, दोबारा मार डालती है, क्योंकि उनको ग्वाल बालों की ये धमकी जो है ना, वो भयंकर धमकी लगती है कि जिनके साथ खेलने के लिए वैकुंठ छोड़ के आए हैं वो मुझे कल खेलने को नहीं लेंगे, तो मेरा आने का मतलब क्या है। द सेम लॉर्ड हु इज ऑल पावरफुल बिकम्स फेयरफुल, And the coward boys tell him that we will not play with you. अजीब लगता है ना भगवान का प्रेम. तो ऐसे भगवान है हमारे. जब गोपियाँ कह रही कि हम बात नहीं करेंगे आपसे, तो भगवान व्याकुल हो गए. बोले क्या करना है बताओ, प्लीज टेल मी. ऐसा मुझे छोड़ मत दो, हाई एंड ड्राई, टेल मी व्हाट टू डू. तूने कहा अभी आपको सारे विश्व के सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा. बोले मंजूर है मुझे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, मैं जाऊँगा सब 14 भुवनों में जाके स्नान करते आऊँगा. आप बोलेंगे आप मैंने तो किया ही नहीं है. मैंने कहा देखा, तो यू कैन से दैट ना, कि आप तो ऐसे ही घूम के आए, राउंड लगा के. बोले सब हो गया मेरा, है ना. इसलिए मैं सारे तीर्थों को यही बुला लेता हूँ आपके सामने. और तीर्थ कैसे हैं, हम लोग को लगता है कि नदी तीर्थ है. नहीं, नदी, सरोवर, कुंड, सागर, पर्वत, वन, जगह, ये सारे तीर्थ होते हैं. जरूरी नहीं कि नदी ही तीर्थ होना चाहिए. तीर्थ में नदी होती है और बहुत प्रकार के तीर्थ होते हैं, अलग अलग सब पर्वत भी तीर्थ होते हैं. वो सारे प्रकार के तीर्थ जो है वो व्यक्ति रूप होकर वहाँ प्रकट हो गए. और जहाँ पर एक जगह पर वो अरिष्टासुर का पैर का निशान हो गया, गड्ढा बना था, उसको भगवान ने बड़ा कर दिया और बोले तीर्थों जाओ, बस जाओ वहाँ पर. तो सारे नदी, तीर्थ, सागर, पर्वत, जितने भी वन वन थे, सब वहाँ पर विराजमान हो गए. तो बाकी पर्वत वगैरह वो दृश्यमान नहीं थे, लेकिन जल तो दृश्यमान था ना, नजर आया आपकी, कुंड पानी से भर गया. तो सारे ग्वाल बाल कृष्ण भगवान गए, उन्होंने वहाँ पर स्नान किया, अशुद्ध होकर आए और गोपियों को बोले अभी आपसे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बैल के, राक्षस के, हाँ, वृषभासुर, हरिष्टासुर जो बैल के रूप में आया था, उसका पक्ष लेके हमसे वाद विवाद किया, इसलिए आपको भी पाप लग गया है उसका. तो आपको भी पूरे सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, फिर हम आपसे बात करेंगे. और वो कहते हैं बाय द वे, आपकी इच्छा है तो हमारे बने बनाए कुंड में आप स्नान कर सकते हो. तो गोपियाँ कहती है कि आपके कुंड में अरिष्टासुर को मारने का जो पाप है वो आपने छोड़ा है, यू नो, जो आपने धोकर वहाँ पर छोड़ दिया है, उसमें हम नहीं स्नान करेंगे, फिर हमको वो पाप लग जाएगा, हम अपना कुंड बनाएंगे. तो कहते हैं मानसी गंगा में भगवान गोपियों ने लाइन लगा दी, उस जगह से लेकर मानसी गंगा तक. आज भी वो 2-3 किलोमीटर दूर है ना, 2-3 किलोमीटर दूर है बहुत. तो वहाँ पहली गोपी मटके से पानी दे रही है, वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है. और यहाँ पर श्याम कुंड के बाजू में कंगन से खोद कर कुछ गड्ढा बनाया है, वहाँ पर डाला जा रहा है. 2 घड़ी तक उन्होंने प्रयास किया, 48 × 2 मिनट्स कितना हो गया, 96 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे के ऊपर. लेकिन कुछ भी कुंड की प्रगति नहीं हुई, ऊपर से पसीने आ रहे हैं उनको. समय शाम का है, अभी शाम को आया हुआ ना सब कुछ, शाम को मुरली बजाई, उसके बाद 2 घड़ी तक सब युद्ध हुआ इनका, 2 घड़ी तक चला. उसके बाद में कुछ समय श्याम कुंड को बनने में गया होगा ना, मतलब अभी अराउंड 9:30 का टाइम हो गया रात को, और 2 घड़ी और प्रयास कर रहे हैं. तो अपने हिसाब से 9:30, 10:30, 11:30 तक पहुंच गए, पसीने छूट रहे हैं उनको, लेकिन कुंड में कुछ प्रगति नहीं है. और कृष्ण भगवान बड़े चतुर थे, सभी जितने भी तीर्थ रूप आए थे, कहते हैं 68,000 तीर्थ वहाँ आए थे, सबको उन्होंने रोक के रखा था. बोला आप रुके रहो आकाश में, मैं बताऊँगा आपको. सब रुके हैं. तो कृष्ण भगवान राधारानी को कहते हैं अरे कब तक मेहनत करोगे, क्या प्रगति हो रही है. वो लोग खड़े हैं ना, उनको मौका दो, वो सेवा चाहते हैं. तो 4 लोगों को इशारा किया भगवान ने, 4 लोग नीचे आ गए. ये सब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सब डिटेल में समझाते हैं, भागवत में उनका अभी पढ़ेंगे ना, ये पूरा डिटेल में दिया है परपोर्ट्स के अंदर, पढ़िए आप, बहुत सुंदर संवाद है उनका, वाद विवाद संवाद सब कुछ है. तो फिर वो 4 लोगों को इशारा करते हैं, 4 लोग नीचे आते हैं और बाकी सबके प्रतिनिधि के रूप में राधा रानी को विनती करते हैं, कृपया आपको सेवा दीजिए, इतना कोई मेहनत करते हैं, हमको भी सेवा दीजिए, आपका भी कुंड बनेगा. तो फिर महाकरुणामयी राधा रानी उनको हाँ कह देती है. फिर वो सारे जितने तीर्थ थे वो सारे वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं. तो उसको कहा गया कंकण कुंड, क्योंकि कंकण से बनाया गया उसको. लेकिन फिर वो जब बन रहा था, जब वो पानी भर रहा था, राधा रानी पहले वो श्याम कुंड से स्पर्श करना भी मना कर रही थी. जब ये बन रहा था तो भगवान ने ना कई सारे आशीर्वाद दिए. भगवान ने कहा कि ये जो राधा कुंड का जल है, ये जल नहीं है, ये राधा रानी का द्रवरूप प्रेम है. इट्स अ लिक्विड लव ऑफ राधा रानी, लिक्विफाइड लिक्विड फॉर्म ऑफ राधा रानी इज़ लव. प्रेम उनका जो मेरे प्रति है वो जल के रूप में प्रकट हो रहा है. और ये कुंड मुझे जितनी प्रिय राधा रानी है उतना ही प्रिय होगा. 2, नंबर 2, जो इस कुंड में स्नान करेगा या उसकी सेवा करेगा, निवास करेगा, स्पर्श करेगा, आचमन करेगा, चिंतन करेगा, पूजन करेगा, वो राधा रानी मुझे कितनी प्रिय है उतना ही प्रिय होगा। और एक चौथा भी दिया है उसी टाइप का वरदान कि भूल गया, मैं स्नान करेगा तो राधा रानी को वो उतना प्रिय होगा जितना मैं उनको प्रिय हूं, ये भी वरदान दिया है। तो राधा कुंड का निवास जो है ना, हमने भी निवास किया कुछ क्षणों का, क्यों ना हो, हम राधा कुंड के घेरे में थे, राधा कुंड के पास थे, आचमन किया, जल लिया, कुछ क्षण, कुछ मिनट हमने वहाँ बिताए, वो भी राधा कुंड निवास है। तो रूप गोस्वामी के अनुसार राधा कुंड निवास परमोच्च निवास है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, और वो जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति आपको करा सकता है। जो जब आप करते हैं मुंबई में उसके 1,00,000 गुना आपको लाभ होता है जैसे आप वृंदावन धाम में आते हो, लेकिन उससे भी हजारों गुना लाभ राधा कुंड में आकर निवास करके वहाँ पर जप करने से होता है। जो भी मंत्र आपने उच्चारण किए होंगे आते जाते यहाँ से, मैंने कहा कुछ बोलो मत, महामंत्र उच्चारण करो, भगवान का नाम लेते रहो, वो उसका आपको करोड़ों करोड़ों गुना लाभ मिला होगा, हृदय की परम शुद्धि हो गई होगी। तो फिर ये सब जो पूर्ण होने लगा ना, तो जमीन के अंदर से फोर्स से छेद बनाकर श्याम कुंड का पानी राधा कुंड में घुस गया, आवेश के साथ, कृष्ण प्रेम का आवेश, कृष्ण के प्रेम का आवेश इतना था कि वो नीचे की भूमि को फोड़कर राधा कुंड के अंदर प्रवेश किया उसने। उसके बाद में राधा रानी के प्रेम के आवेश से वो फ्लड हो गया राधा कुंड, और वो श्याम कुंड को ऊपर से जाके मिला। समझ में आपको आया, दोनों तरफ से उनका मिलन है। तो बीच में जगह जो है ना उसको योगपीठ कहते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का प्रतीक है एक्चुअली, यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड का मिलन होता है, राधा और श्याम सुंदर मिलते हैं, वो महाप्रभु चैतन्य का प्रतीक है। और ऊपर से प्रेम आवेश से ऊपर से इनके प्रेम के आवेश से ऊपर से इनके से नीचे से दोनों तरफ से राधा कुंड श्याम कुंड का मिलन है, ऐसा दिव्य धाम है वो। और वो इतना दिव्य धाम है कि विश्व के जितने भी संप्रदाय हैं और जितने भी बड़े आचार्य हुए हैं वो सब ने राधा कुंड में आके भजन किया है। इसलिए राधा कुंड में मैंने कहा ना कि आपको एक दिन भी कम पड़ेगा राधा कुंड को पूरा तीर्थानों को देखने के लिए। सभी गोस्वामी भजन कुटी है, सभी हमारे जितने विग्रह हैं, जब आतंक हुआ यहाँ पर तो सभी विग्रह जाकर राधा कुंड में रुके हुए हैं। हमारे सारे विग्रह जितने भी अभी वृंदावन में है और थे वो सब राधा कुंड में उनका मंदिर है। बांके बिहारी जी का मंदिर भी है, राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है वहाँ पर, हर प्रकार के मंदिर वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया है मुसलमान के आतंकों से। फिर कुछ वहाँ से काम्यवन चले गए, कुछ काम्यवन से वहाँ से जयपुर चले गए, कुछ वहाँ से जयपुर सीधे चले गए, राधा गोविंद मदन मोहन जी गोपीनाथ राधा विनोद हर प्रकार का मंदिर है वहाँ पर, यहाँ पर ठाकुर सब रहे हैं और प्रतिभु मूर्तियाँ वहाँ पर विराजमान है। फिर राधा कुंड का जब निर्माण हुआ तो बहुत लीलाएँ हुई, और राधा रानी क्या कहती है कि मैंने तो मना किया था कि मैं स्नान नहीं करूँगी आपके कुंड में, कि वहाँ पर अरिष्टासुर को मारने का पाप छोड़ा हुआ है। बोलते हैं आप अगर ऐसे 100 बैलों का वध करेंगे ना फिर भी मैं आपके कुंड में आकर रोज स्नान करूँगी, प्रेम है राधा रानी का। इसलिए 11:48 पर हर रोज़ राधा रानी श्याम कुंड में जाके स्नान करती हैं। उसी के किनारे पांच पांडव वृक्ष के रूप में भजन करते हैं, इसलिए उसको आज पांडव घाट कहते हैं। लेकिन वही घाट में राधा रानी अपने 64 सखियों को लेकर रोज़ 11:48 पर स्नान करती है, वो उनका स्नान का टाइम है। अष्टकालीन लीला में, अष्टयाम लीला में राधा कुंड का निवास उनका दोपहर के समय होता है। वहीं पर राधा रानी कृष्ण के साथ पाशा खेलती, यानी कि चेस, यानी क्या होता है ना, चौसर का खेल जो राजा रानी खेलते हैं, तो वहाँ पर पाशा खेला घाट है श्याम कुंड पर। कहते सब जगह कृष्ण आतंक मचाते हैं लेकिन पाशा खेला घाट में राधा रानी सब हर टाइम उनको हरा देती है। जब हम उतरे थे ना वहाँ पर तो उसी के बाजू में पाशा खेला घाट है, उसके सामने पांडव घाट है। तो फिर भगवान की इच्छा के अनुसार फिर सभी लुप्त हो जाते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य जब आए तो उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की और गोवर्धन में कृष्ण का दर्शन उनको हुआ, वो बेहोश हो गए, और वो सब होने के बाद में वो राधा कुंड श्याम कुंड के एरिया में आए जिसको अरिष्ट ग्राम कहते हैं, एक्चुअली अरिट ग्राम बांग्ला में। तो महाप्रभु ने जाकर वहां पर सब लोगों को पूछा, यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है क्या? तो उस समय किसी भी ब्रजवासी को पता नहीं था कि राधा कुंड श्याम कुंड क्या चीज होती है, इतना लुप्त हो गया था वो। तो फिर श्याम कुंड जिस जगह पर आज है उसके किनारे की जगह पर, मतलब उस समय कुछ नहीं था, जमीन जमीनी थी, तो एक किनारे वहां बैठ गए और महाप्रभु ने ध्यान किया। तो ध्यान में उनको राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन हुआ, दिव्य दर्शन। जो आंख खोला तो वो स्थान उनके सामने ही था, तो वो जाके छलांग लगाया तो दो वहां पर ऐसे पानी के क्या कहते हैं पडल्स थे, डबका बोलते मराठी में उसको, छोटे छोटे पानी के थे जगह, ऐसे लगता था कीचड़ है लेकिन पानी की जगह थी, छोटे से थे। तो जाके दोनों में छलांग लगाई उन्होंने और वो कीचड़ नीचे का निकाल के अपने बदन को लगाने लगे, तिलक के रूप में मलने लगे। तो ब्रजवासी लोग बहुत परेशान हो गए, बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्हें बताया यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। इस तरह से महाप्रभु जी ने अपनी कृपा से खोया हुआ राधा कुंड श्याम कुंड जो है विश्व के लिए दोबारा प्रकट किया। 1515 में जब यहाँ पर आए थे वृंदावन में, तभी वो दोबारा प्रकट किया गया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने आदेश दिया कि इसका जीर्णोद्धार करो आप, यानी इसको डेवलप करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर आके भजन करने लगे और उनको इच्छा थी कि इसको हम रिनोवेट करें, लेकिन बहुत बड़ा खर्चा था उनका। उनको लगा कि मैं भजन करूँ कि ये करूँ, तो भजन में लग गए वो। उनका भजन ऐसा था राधा कुंड किनारे में कि एक बार वो राधा कुंड किनारे में बैठ के भजन कर रहे थे, तो गर्मी का समय था तो प्यासा होकर शेर वहाँ पर पानी पीने आया और ये इतने मग्न भजन में बैठे हुए हैं, धूप में तड़प रहे हैं। तो ठाकुर जी कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और डंडा लेकर शेर को भगाया भगवान ने, ताकि रघुनाथ जी का भजन भंग न हो। और सनातन गोस्वामी देख रहे हैं, बोलते हैं मूर्ख सनातन तो भजन किस लिए कर रहा है? कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण को सेवा में लगाने के लिए। आज ऐसे ऐसे हुआ तो अभी तो कमरे अपनी कुटी बना लो ताकि तुम ये सब आतंक से बचो। फिर भी वो लगे रहे, इतने विरक्त थे वो। स्वयं कृष्णदास बताते हैं कि रघुनाथ दास जी का विरक्ति जो है उसकी कोई कभी भी नकल नहीं करना चाहिए, अगर कोई नकल करेगा तो मर जाएगा वो। सनातन गोस्वामी की नम्रता, रघुनाथ जी की विरक्ति और जगदानंद का जो स्वभाव था भगवान को डांटने का, तो अलग है ना, सत्यभामा का अवतार है वो, तो उनका भाव अलग है, तो उसकी कोई नकल करेगा तो उधर ही मर जाएगा वो, ऐसे कहा गया है। तो इनकी विरक्ति ऐसी थी कि 3 दिन में एक बार ये चुल्लू पर छाछ पीते थे, अपने को गाली देते हुए कि मैं कितना बड़ा इंद्रिय भोगी हूँ, छाछ पी रहा हूँ। तो ये भजन करते रहे वहाँ पर। तो अगली बार क्या हुआ, गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी थी, बदन जल रहा है, तो राधा रानी ना इनकी गर्मी का कष्ट देखकर खुद अपना पल्लू लेकर खड़ी हो गई उनके सामने, वो छाया दे रही उनको, और राधा रानी के कपाल से श्वेत जल टप 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 गिर रहा है। और ये भी सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कि ये भजन में लगे हुए हैं और राधा रानी स्वयं अपना पल्लू से छाया दे रही है और खुद तप रही है। तो बहुत डांटा उनको रघुनाथ जी को कि राधा रानी स्वयं आपकी सेवा में, तब जाके उन्होंने अपनी छोटी सी कुटी बनाई जो राधा कुंड के किनारे में है। तो फिर भजन में इतने तीव्र लगे थे तो उनको ना एक बार एक व्यापारी था, वो बहुत बड़ा धन लेकर बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ की सेवा करने के लिए। तो वहाँ बद्रीनाथ पहुँचा तो रात को विश्राम किया तो बद्रीनाथ स्वयं बद्री विशाल उनके स्वप्न में आए, उन्होंने बताया तुमने मेरे लिए बहुत धन लाया है, वो धन लेकर तुम वृंदावन चले जाओ, राधा कुंड में एक रघुनाथ दास बाबा रहते हैं उनकी सेवा में लगाओ। तो बद्री विशाल के आज्ञा से वो ढूंढ ढूंढ के राधा कुंड पे आया और दास गोस्वामी को ढूंढ के निकाला उन्होंने। उन्होंने कहा कि भगवान का आदेश है कि आपको ये धन दे दें, तब उनको ध्यान आया कि मुझे इनका इस कुंड का जीर्णोद्धार करना है। तो उन्होंने सब लगाकर फिर वो उनका क्या कहते हैं एक्सकेवेशन शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, समय बढ़ता जा रहा है कोई बात नहीं, तो उसे क्या हुआ कि कंकण कुंड था ना वो प्रकट हो गया। एक्चुअली आज भी आप राधा कुंड का जल कब खाली करते हैं ना साफ करने के लिए, कीचड़ को साफ करने के लिए, तो एक अलग कुंड आपको मिलेगा अंदर उसके, कंकण कुंड, जिसको यू इस तरह से है और अपना बॉर्डर इधर है तो उसको विस्तारित किया गया है, और कंकण कुंड आज भी है। यहाँ पर एक रामताल करके जगह है, वहाँ पर पता नहीं कब ले जाऊँगा आपको, वहाँ पर जब एक्सकेवेशन किया गया ना तो ओरिजिनल कुंड की बॉर्डर निकली जो JCB से भी टूट नहीं पाई। ऐसे बॉर्डर बनी हुई थी नीचे, पत्थर की बॉर्डर बनी हुई। फिर उन्होंने एक्सकेवेशन रोक दिया, क्योंकि समझ गए कि हम लोग अभी ओरिजिनल रामताल के कुंड के पास पहुंच गए हैं। फिर वो उन्हें एक्सकेवेशन बंद कर दिया, फिर उसको विस्तारित किया, और आज भी वो बॉर्डर तो दिखाई पड़ती है जिसके ऊपर अपनी नई बॉर्डर बनाई गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या कहते हैं प्रपोर्शनेटली राधा कुंड का एक्सपेंशन किया है। लेकिन जब वो श्याम कुंड को खोदने लगे ना, तो अचानक बीच में एक बार स्वप्न उनको आया, पांडव स्वप्न में आए युधिष्ठिर महाराज के साथ। बोले कि श्याम कुंड के किनारे हम लोग भजन कर रहे हैं, पांचों भाई, हमारे पेड़ों को काटना नहीं आप, मतलब हम पेड़ के रूप में भजन कर रहे हैं। तो इसलिए श्याम कुंड जो है वो ऐसे 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 बना हुआ है, चौकोर नहीं बना हुआ है। फिर वो खुदाई चल रही थी, खुदाई चल रही थी, और श्याम कुंड के उस तरफ खुदाई कर रहे थे, अचानक ना खुदाई करने वाले आंखों के लोगों के सामने खून की फव्वारा उड़ा, खाड़ गई एकदम से। एक बार फवड़ा लगा दिया तो उसके अंदर ऐसा लंबा खून की धार निकली, हवा में उड़ रही है। सब डर गए, बोलो क्या हो गया, बंद कर दिया। भाभी जी के पास में खबर आई, फिर उन्हें तुरंत काम रुकवा दिया। कुछ दिव्य बात है, रात को स्वप्न में स्वयं गोवर्धन नाथ, स्वयं गोवर्धन जी आए, बोले आपके लोगों ने मेरे जिह्वा पर आघात किया है, वो मेरी जिह्वा है, उसको अभी आप निकालो और अलग रूप से उसको स्थापन करो और उसकी पूजा करो। तो वो जिह्वा निकाली गई और उसी श्याम कुंड के पीछे एक जगह है जिह्वा मंदिर, वहाँ पर उसको जिह्वा को स्थापन किया है, और वो जिह्वा मंदिर स्थापन किया है। तो फिर कुंड सब बंद हो गया। फिर श्याम कुंड में, राधा कुंड में लोग कपड़े धोते थे, भैंस धोते थे, सब कुछ करते थे, रूटीन काम करते थे। तो दास गोस्वामी को पता चला कि ये तो इतना पवित्र कुंड है, इसकी इतनी अगाध लीला है, ये एक सामान्य काम के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और लोगों को अगर कपड़े धोने ही हैं तो चलो एक कुआं खोदते, तो वो कुआं खोदते हुए उधर वो जिह्वा से खून निकला था। तो फिर वो जिह्वा को स्थापन किया, फिर वो कुआं बनाया, उसका नाम है गोपी कुआं। श्याम कुंड से गुजरते तो ऐसे जाते हैं लोग, तो वो कुआं जो है गोपी कुआं है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कॉमन यूज के लिए बनाया, ताकि लोग राधा कुंड श्याम कुंड में अपने सामान्य काम न करें। सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो इस तरह से माधवेंद्रपुरी की भजन बैठक भी वहाँ पर है, श्याम कुंड के पास। नित्यानंद प्रभु की बैठक भी वहाँ पर पास में है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बैठकर ध्यान किया था, वो जगह भी है, उसको कहते हैं तमाल तला, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया था। राधा कुंड के किनारे सभी गोस्वामी का भजन कुटी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधा कुंड के किनारे पे निवास किया और वहां बैठकर चैतन्य चरितामृत लिखा। उनको 90 साल की आयु पर भक्तों ने विनती किया कि महाप्रभु का चैतन्य चरित्र आप लिखो। तो बार बार कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे ठीक से दिखता नहीं है, हाथ मेरे कांप रहे हैं, लेकिन आप लोगों की इच्छा है, इसलिए भगवान की इच्छा मानकर मैं लिख रहा हूँ। कैसे लिखूँ, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार आत्महत्या करने जा रहे थे महाप्रभु के विरह में, तो उनको गोस्वामी ने समझाया, सनातन गोस्वामी ने, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया ना कि आपका शरीर आपका नहीं है, संन्यास मतलब आप दुनिया के लिए मर चुके हो, केवल भगवान के लिए जीवित हो, तो आपका शरीर तन मन धन काया वाचा मने ये भगवान का अधिपत्य है उसके ऊपर। तो फिर हमने कहा कि आपको विरह हो रहा है ना महाप्रभु, तो आप महाप्रभु के विषय में रोज प्रवचन किया करो। जितना समय आपने जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ बिताया है, वो सारी यादें स्मृतियाँ आप वर्णन करो, आपका विरह कम हो जाएगा। गोपियाँ भी जब उद्धव को मिली थी तो बहुत विरह में ग्रस्त थी, लेकिन जब उद्धव को उन्होंने भगवान की यादें बताना शुरू किया तो उनको आनंद होता रहा, विरह नष्ट होता रहा। इसलिए उद्धव जी ने सांत्वना नहीं दिया, उनको ही बुलाने के लिए प्रवृत्त किया, बोलने के लिए, और वो 6 महीना बोलती रही और अपने आप सांत्वना प्राप्त होती रही। उसी प्रकार से अपने विरह को, अग्नि को रोकने के लिए रघुनाथ दास जी ने फिर रोज वहां पर 3-4 घंटे प्रवचन शुरू किया रोज। तो वो जो है वो चैतन्य चरितामृत का सेकेंड हाफ है, और चैतन्य चरितामृत का जो फर्स्ट हाफ है वो मुरारी गुप्ता और स्वरूप दामोदर इन दोनों के नोट्स है। ये सब मिलकर चैतन्य चरितामृत निर्माण हो गया है और उसका लेखन जो है राधा कुंड के किनारे में हुआ है, वो जगह भी वहां पर है जहां पर उनको लिखा गया है। कई गोस्वामियों की समाधि भजन कुटी वहां पर शोभा देती है। राधा वल्लभ जी का स्थान है, बांके बिहारी का स्थान है, गोपाल जी का मंदिर है। स्वयं गोपाल जी प्रकट हुए थे हमारे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी के स्वप्न में आए थे और गोपाल जी वहां प्रकट हुए हैं। राधा कुंड के किनारे में मंदिर है उसका, उनकी समाधि भी उसमें मंदिर में पीछे है स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की। तो ऐसा ये बहुत दिव्य स्थान है, उसके आसपास में बहुत सारे स्थान हैं। ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्थापन किया हुआ राधा कुंज बिहारी का मंदिर है जो बंद था, हम देखने गए आपको, थोड़ा सा ऑफ कट है उसका, थोड़ा सा ऑफ कट में माल्याहारी कुंड है जहाँ पर भगवान ने मोतियों की लीला की है, बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर है। उसका पूरा किताब है माल्याहारी कुंड की लीला का। इस तरह से गिरिराज जी के इर्द गिर्द और गिरिराज के बीच में बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं, बहुत सुंदर लीलाएँ। तो आपको और क्या सुनना है, जिसको कुछ याद आ रहा है क्या, तो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लीलाएँ हैं चारों तरफ। सबसे पावरफुल लीला जो है, जैसे दो आँखें राधा कुंड श्याम कुंड है, हृदय जो है वो कुसुम सरोवर है, और पुछरी जो है वो पुछरी जहाँ लोटा बाबा बैठे हुए हैं, ऐसा गोवर्धन का स्वरूप है। हमेशा एक्सटेसी में रहते हैं गोवर्धन जी। तो बहुत सारी दान लीलाएँ, गौचारण, ऐसे गौचारण लीलाएँ, रास लीलाएँ वहाँ पर संपन्न हुई है। और हमारे गोपाल चंपू के अनुसार जब भगवान ने प्रथम बार गौचारण किया, यानी फर्स्ट डे ऑन गोपाष्टमी डे, तो वो गोवर्धन पे गायों को लेकर गए थे, ऐसा वर्णन आता है। फर्स्ट डे ऑफ बिग काउज वर टेकन टू गोवर्धन गौचारण। तो गोवर्धन के ऐसे ऐसे वर्णन है, पुष्टि वर्धन करने वाले सुगंधित घास को गोवर्धन ऊपर निर्माण करता है, सब भक्तों के ऊपर अंदर चैतन्य उत्पन्न करता है भगवान की भक्ति के लिए। गोवर्धन का दर्शन मात्र ही हृदय को पवित्र करने वाला है। हाँ, निज निकट निवास देही गोवर्धनत्वम, ऐसे हमारे गोवर्धनाष्टकम में उसका एक ध्रुव पद है। भक्त केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं, कब हमें आपके तलेटी में निवास दोगे आप, कृपया बताइए आपके तलेटी में कब हम निवास कर सकते हैं। वहाँ का निवास जो है अति अति परम पवित्र करने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि हम गोवर्धन की यात्रा करेंगे तो गोवर्धन में ही रहेंगे, कहीं दूर दूर यात्रा नहीं करेंगे, बस से यहाँ 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो वहीं रहेंगे, तो वहीं से पैदल पैदल 4 दिन में परिक्रमा पूरी करेंगे, कि कोने कोने में जाएंगे, सब जिलाओं के सलियों को देखेंगे। वहाँ पर हमारे नहीं, कितने आचार्यों की समाधि है वहाँ पर, कितने आचार्यों की समाधि है, बहुत सुंदर स्थान है वो, बहुत सुंदर आचार्यों की समाधियाँ हैं, भजन स्थलियाँ हैं, लीला स्थलियाँ हैं, संत लोगों ने वहाँ प्रकट किया है। एक कथा बता देता हूँ, तुरंत याद आ रही है मुझे, वो जो भगवान ने बताया, लीला बताना रह गया पूरा, जब ये इंद्र ने आतंक किया, सब जानते हैं ना, पूजन भगवान ने कैंसिल किया और गोवर्धन का पूजन करने का सलाह दिया, जो जो साहित्य है और घर में साहित्य है सब ले आओ और अर्पण करो, तो 3 हिस्सा है लीला के। एक हिस्सा जो है गोवर्धन पूजा का हिस्सा है, वो आनंद ही आनंद है। फिर एक हिस्सा है वर्षा का, बहुत दुखी दुख है उसमें, आतंक ही आतंक है। फिर एक हिस्सा है गिरिराज को उठाने का, तीसरा हिस्सा भी आनंद ही आनंद है। तो इसमें ब्रजवासी पंच भी है बीच में। जब भगवान ने इसका महात्म्य देखा कि भाई ये वेट करने को तैयार है ताकि मैं अगले युग में आऊँ और लीला करूँ, तो भगवान ने उनको आदेश, उनको एक वरदान दिया कि 7 कोस के आपके शरीर को मैं मेरे ब्रज में नहीं लगा सका, इसलिए मैं अगले युग में आऊँगा और 7 दिन और 7 रात आपको मेरे सर पर ऊपर धारण करूँगा छत्र के रूप में, वो सम्मान दूंगा आपको मेरे शीश के ऊपर खड़ा रहने में। दिस इज ब्रिजवासी पंच, 7, 7 और 7, ठीक है। तो हाँ, तो जब वर्षा हो रही है भयंकर, वो गोवर्धन पूजा का आनंद समाप्त हो गया, भगवान ने परिक्रमा किया, भगवान ने भोजन लिया। उसमें 2 चीज़ें बहुत बताना चाहता हूँ आपको। भगवान ने सारा जो दान निवेदन कुंड से लेकर आने और तक जो भोजन रखा था पूरा अनंत मात्रा में, वो सब एक दो तीन क्षण में भस्म कर लिया, मतलब भक्षण कर लिया उसका। तो कुछ गोपी, एक गोपी थी बद्रौला नाम की, बद्रौला आज भी वो ऊंचे गांव के पीछे गांव है बद्रौला उस गोपी के नाम से। तो वो जो गांव है वो गोपी ना कुछ काम, वो ब्रजभानु महाराज के सेविका भी थी, वो नहीं आ पाई। तो उसने वहीं से अपने गांव के घर में अन्नकूट बना के बोले भगवान यहीं से ले लो। तो भगवान ने हजारों भुजाओं को प्रकट किया था उस समय, वो हजारों भुजाओं से अपना भोजन किया था। तो एक भुजा पीछे, सात कोस पीछे कर दी उन्होंने, क्योंकि तो बरसाने का, बरसाना जो है ना वो उत्तर दिशा में है और मथुरा वृंदावन दक्षिण दिशा में है, बीच में गोवर्धन जी है। तो भगवान उसमें वृंदावन की ओर मुख करके सब लीला कर रहे थे, तो बरसाना उनके पीछे था। तो एक हाथ पीछे किया, सात कोस पीछे कर दिया और सारे बद्रौला के भी भोजन खा लिए उन्होंने। हाथ रस में भी कुछ गोपियों ने अन्नकूट किए थे, तो उधर भी हाथ फैलाया और उधर भी, इसलिए हाथ रस नाम पड़ा उसका, और इसका नाम पड़ा बद्रौला गांव। तैसे भगवान ने बहुत सारे चमत्कार किए। गोपियों ने एक बार बीच में क्या, भगवान जब भी प्रकट हो गए ना बीच में, तो उनके बीच में भी खड़े हैं बालक 7 साल के, और विशाल आकार में भी सुंदर भगवान प्रसन्न प्रकट हो गए ना, हजारों भुजा वाले। तो राधा रानी और गोपियाँ कहती हैं अरे ये सब छलिया है, सब नाटक कर रहा है, इधर भी है उधर भी वही है इधर भी यही है, ऐसे उनको ताने दे रहे हैं। हाँ, उनके लिए भगवान का ऐश्वर्य का कोई वैल्यू नहीं है। दे डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय एनी ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा एनी टाइम, तो खाली प्रेम से प्रभावित होते हैं। तो भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं ना वहाँ पर, इतने सहस्त्र भुजा वाले गोवर्धनधारी गोवर्धन स्वरूप भगवान प्रकट होकर इतना चमत्कार दिखा रहे हैं, इतना सारा भोजन कुछ क्षणों में फस्त कर रहे हैं, बोले बहुत थोड़ा छलिया है, बहुत ड्रामा ड्रामेबाज है, सब कुछ खुद ही करता है, खुद ही खाता है, खुद ही बोलता है। अरे बोले वाह वाह वाह, क्या गोवर्धन नाथ भगवान को गौरव भी कर रहा है, खुद का ही गौरव कर रहा है ऐसे भी बोलते हैं। तो फिर जब वर्षा भयंकर हुई ना, तो उस वर्षा का हम लोग कथा में पढ़ते हैं, हाँ वर्षा हुई, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम लोग उसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। प्रलय काल की वर्षा हो रही थी, वो भी पूरे विश्व पे नहीं हो रही थी, 14 ब्रह्मांड में नहीं, भुवन में नहीं हो रही थी, केवल एक जगह पे हो रही हो। वो प्रलय काल की वर्षा है ना, वो ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली होती है। मिनी मिनी प्रलय भी हो सकता है, लेकिन वो पृथ्वी के एक गांव पर की जा रही है पूरे शक्ति के साथ प्रलय की वर्षा। तो इतना अंधकार हो गया था कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इतनी वर्षा हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी, सब लोग कांप रहे थे, इधर गेटिंग फ्रोजन। तो गाय बेचारी अपने बछड़े को चार पैर के बीच में रखकर कोशिश कर रही है ठंड से और वर्षा से बचाएं, तो दोनों बहते जा रहे हैं, घर भी बहते जा रहे हैं, गौशालाएं बह जा रही है। बोलो यहाँ आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग कांप रहो, व्हाट इज हैपनिंग यू डोंट नो, ऐसी भयंकर कंडीशन थी। उसमें सब लोग कृष्ण कृष्ण को पुकार रहे थे, तो कृष्ण उनको बोला आप प्रकट हो गए उधर, बोले चलो मेरे साथ। तो हम लोग अगर उनकी जगह होते तो क्या कहते, अरे तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुमने बाबा को समझाया कि ये मत करो वो करो, उसकी वजह से हम लोग आतंक भोग रहे हैं, और अभी तुम बोल रहे हो हमारे साथ चलो, हम नहीं आएंगे आपके साथ, ऐसे बोला है उन्होंने, नहीं बोला उन्होंने, सीधे पीछे उनके पीछे चले गए। वो उनको प्रविष्ट वन लेके गए, वो प्रविष्ट वन लेके गए तो ग्वाल बाल पूछते अभी क्या करोगे, आपकी छोटी बेटी का नाम क्या है, राधा। अगर राधा आपको बोलेगी मम्मी मैं आपके ये बिल्डिंग को आज उठाने वाली हूँ, तो आप क्या बोलेंगे इसको, हंसेंगे जैसे अभी हंस रहे हो। तो अभी वो 7 साल का बालक बोल रहा है इतना बड़ा आतंक हो रहा है अभी क्या करोगे, बोले पर्वत को उठा लूंगा। तो सब लोग हंसने लगे, मतलब हंसने लगे, दुखी थे सब लोग, लेकिन वो परेशान हो गए कि क्या बात कर रहे हो तुम, कैसे विश्वास करें हम। तो भगवान ने ना एक बड़े, जैसे मेरे हाथ फैला ना, मैं इतना हाथ फैलाया ना, इससे भी बड़ा कदम का पेड़ है उधर था, वो उन्होंने अपने दोनों हाथ से उखड़ा पूरा, और उसको जैसे हम साड़ी कपड़ा बनियान निचोड़ते ना ऐसे, उसको पूरा निचोड़ दिया उन्होंने सबके आंखों के सामने, इम्पॉसिबल टास्क किया उन्होंने। तो ये देखकर ग्वाल बालों को विश्वास हुआ कि हाँ ये कर सकता है। तो वो जो पेड़ है उसका नाम है ऐठा कदम, उसको भगवान ने ऐठ दिया, वो आज भी वहाँ पर शोकेस में रखा है वैस वार्निश करके, मेंटेन करके रखा। आप देखिए उसको, आपको देख के पता चलेगा कि ये ऐठा हुआ पेड़ है, निचोड़ा हुआ पेड़ है, कदम का पेड़ है वो। फिर भगवान उनके सामने आगे चले हैं और जमीन के अंदर गुफा में प्रवेश किया है, वो है प्रविष्ट गुफा, जो अभी अभी तक वहाँ पर ओपन थी, फिर लोग उसके अंदर जाके गायब होने लगे, मतलब अंदर गया तो पता नहीं कहाँ गया वो। ऐसे कई गुफाएं हैं इस विश्व में, भारतवर्ष में, जो बाद में बंद कर दी गई हैं। तो वो गुफाएं हैं, तो गुफा में से भगवान ने प्रवेश किया और पृथ्वी के नीचे जाकर जड़ से गोवर्धन को उठाया। अब पहले ऐसे उठाया हथेली पे, फिर उसको उंगली पे ट्रांसफर किया, फिर खड़े हो गए। उसमें एक पंचलाइन ऐसी है कि जैसे अभी गोवर्धन, अभी हम गोवर्धन किधर है, गोवर्धन क्षेत्र में, इधर मथुरा है, वृंदावन है, सात मंदिर है, कितना सारा क्षेत्र है, इतने सारे वन है, इधर वन है, उधर वन है, आगे नंदगांव बरसाना, कितनी जगह है उधर। लेकिन सारे ब्रज के जितने भी प्रवासी थे, मतलब हम सब लोग भी, यात्री भी, वो सब लोग गोवर्धन के नीचे आ गए। तो कैसे समा पाए उधर वो? कहते गोवर्धन एक्सपांड हो गया पूरा, सभी ब्रजवासियों को एकोमोडेट करने के लिए, नहीं तो कैसे मुमकिन था बताइए। इतने सारे करोड़ों गोपियाँ को रास में नृत्य करती थी जमुना किनारे, इतने सारे ग्वाल बाल, इतने करोड़ों बछड़े बचिया, गाय बैल और हिरन और भैंसा भैंसी और खरगोश, इतने सारे भगवान के सखा सखियाँ थे, वो सब लोग आ गए उसके अंदर, खाले मनुष्य नहीं आए, एवरीबडी केम अंडर हिम। तो वो विस्तारित हो गए, सबको उन्होंने संभाल लिया। और एक ही व्यक्ति इस बारिश के आतंक से मुक्त नहीं था, वो कौन था? गोवर्धन पर्वत। बाकी सारे अंदर आ गए थे उनके, अभी उन पर एक भी मुसलधार की बूंद नहीं गिर रही है, ना कोई नीचे से पानी जमा हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको चक्र वहां पर उनको घुमाया भगवान ने, इसी तरह से कि चक्र ने एक बूंद गिरने नहीं दिया। तो अंदर तो आनंद ही आनंद था, मतलब आप अगर समझो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है समझो, और एक बंद महल में आप सब लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हो। जैसे हम लोग एक बार श्रीनाथ जी प्रभु के घर पे ना एक सत्संग कर रहे थे रात को, हाँ वो तारीख थी 26 दिसंबर। तो उसी टाइम पे चर्च गेट पे विटाई पीटे पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए बहुत सारे। तो हम लोग श्रीनाथ जी प्रभु के बंगले में रहे सब लोग, 70-80 लोग, और रात भर कीर्तन कर रहे हैं। सुबह जब आतंक समाप्त हो गया, न्यूज़ आ गई, अपने अपने घर चले गए सब लोग। तो मतलब बाहर बहुत आतंक हो रहा है, लेकिन हम लोग श्रीनाथ जी प्रभु के घर पे एकदम आनंद में प्रसाद पा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, महाराज कथा कर रहे हैं, सब लोग उधर ही रहे। आप थे प्रभु जी उसमें? वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना बॉम्बे का, वो अजमल कसाब वाला, उस दिन हम लोग श्रीनाथ जी प्रभु के घर पे थे नाइट प्रोग्राम के लिए। उसी तरह से बाहर प्रलयकारी प्रलयंकारी वर्षा हो रही है, लेकिन सब लोग गोवर्धन के तले जो है ना आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। तो उसमें क्या हुआ, सब लोग ऑलरेडी परेशान हैं कि बालक उसको उठा के खड़ा है, पता नहीं कब गिर जाएगा अपने ऊपर, कितने समय तक वो ऐसा हो रहा है प्रभु जी ब्लिंकिंग। तो सबने शांडिल्य मुनि को बुलाया, क्योंकि उसके अंदर वो भी थे। बोले महाराज जी जरा बताइए क्या करें, कभी भी बालक इतना छोटा सा बालक है, वो कभी भी पर्वत गिरेगा तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग बाहर भी मौत है, अंदर भी मौत है कि नहीं? पहाड़ गिरेगा तो सब लोग दब के मर जाएंगे, पहाड़ छोड़ के जाएंगे तो बाहर मर जाएंगे, क्या करें? शांडिल्य मुनि ने कहा कुछ टेंशन मत लो, एक आसन लो बढ़िया सा और इसके सामने राधा रानी को आके बिठा लो, सब ठीक हो जाएगा, कोई पर्वत पर गिरेगा नहीं। तो एक्चुअली राधा रानी को सिंहासन बैठा के इनके सामने बिठाया हुआ है, और उनको देखते देखते 7 दिन तक पर्वत उठाए खड़े रहे भगवान। तो क्या लीला है वो, माता कह रही है हरे कछु खायो नहीं सवेरे से, सुबह से लगे हुए उठाने में, तो कुछ माखन तो खा ले और कुछ हाथ तो चेंज कर ले, तो मैं हाथ को मालिश कर लूँ, पहाड़ को इसमें डालो फिर मैं इसको मालिश करूँगी, कुछ देर बाद इसको ट्रांसफर करो, इसको मालिश करती हूँ, मैया का प्रेम है। और सब सखियों को बता रही है देखो मैंने वो पद्मगंधा गाय को संभाला, इतना सारा मक्खन बनाया, इतना सारा स्पेशल मक्खन खिलाया, आज काम आया, देखो आज काम आया ना, देखो इतनी सारी मेहनत। तो ग्वाल बाल जो है ना उनको देख रहे हैं, क्योंकि अभी कैसा है ना गोवर्धन के तले सारे रसों के सारे भक्त एकत्र हुए थे जो कभी होते नहीं हैं। दिन में गौचारण तो ग्वाल बाल, रात को रासलीला तो गोपियाँ, घर में माता पिता तो वात्सल्य, ऐसा कोई मिक्सचर नहीं उसका, लेकिन सारे प्रकार के भक्त जो है वो एकत्र गोवर्धन के नीचे हुए थे। तो मैया कुछ बोल रही है तो ग्वाल बाल सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैया को सब लोगों को पता नहीं है एक्चुअली रियल कारण क्या है। रियल कारण ये है कि हम लोग उसको रोज कुश्ती कुश्ती खेल खेल के हराते थे, और हारते हारते इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि आज वो देखो पर्वत उठा रहा है। तो ये गोपियां सुन रही है, गोपियां बोलती है ना मैयाओं को पता है ना ग्वाल वालों को पता है सच्चा रहस्य क्या है। सच्चा रहस्य यह है कि राधा रानी तिरछी नजरों से देख रही है, तो नजरों से जो शक्ति जा रही है उसी से वो उठा पा रहा है। और ये ग्वाल वालों ने सुना तभी कैसे प्रूव करें उनको, लीला तार चल रही है तो हाउ टू प्रूव दैट इनकी नजरों के बल से वो उठा के खड़े हैं। शांडिल्य मुनि ने भी कहा हुआ है, लेकिन बाल बालों को तो अपना ही कहना है ना कि भाई हमने कुश्ती लड़ाई उनसे। तो गोधन लीला समाप्त होने के बाद में फिर ग्वाल बाल राधा रानी के पास में गए गोपियों के पास, बोला अभी दिखाओ अगर आपकी नजरों में इतनी शक्ति है तो गिरिराज को उठा के दिखाओ। तो राधा रानी ने उस समय नजरों से गिरिराज को उठाया आकाश में, ऐसे देखती रही, फिर बोली रखो नीचे, तो ला रखो, फिर रख दिया नीचे। तो वास्तविक राधा रानी के कृपा कटाक्ष में इतनी शक्ति है जो कृष्ण को प्राप्त होती है जिसके कारण वो उठा पाए, ये इसका वास्तविक कारण है। ऐसी कई अद्भुत चीजें उसके नीचे हुई है गोवर्धन लीला में। गोवर्धन लीला बहुत अद्भुत लीला है, आनंद भी है, थ्रिल भी है, एडवेंचर भी है, डर भी है, सब कुछ है उसके अंदर। एक सनसनीखेज मूवी है वो पूरा कम्प्लीटली, बट दो आनंद के बीच में एक सैंडविच है दुख का बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन दोनों पार्ट जो है वो आनंद और आनंद से ही भरे हुए हैं। इतना आनंद ब्रजलीला में कभी भी नहीं हुआ है। गोवर्धन पूजा में भी परम आनंद और अंदर अंदर भी उसके खड़े हैं तो परम आनंद है। और हमारा भाग्य है कि हमको ये सब आचार्यों के माध्यम से पता चल रहा है। वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन स्पीकिंग एंड इन हियरिंग इन इमेजिनिंग इन रिमेंबरिंग, सो फॉर्चुनेट वी आर। ये लीलाओं का चिंतन करेंगे ना और जीवन में कोई दुख बचेगा नहीं। जैसे सुरभियों के मन में कुछ दुख नहीं बचा था जब इंद्र आए थे, हाँ लात मारो उसके मुंह पे, यही हमको ध्वस्त करने के लिए आया था, ऐसा भाव नहीं आया उनके मन में। इतना आनंद लुटाया भगवान ने, कोई दुख का इंप्रेशन बचा ही नहीं उनके अंदर, तत्क्षण क्षमा कर सके वो इंद्र को। इंद्र भी शरण गए, भगवान ने भी माफी कर दी उसको। ऐसा अद्भुत लीला है गोवर्धन का। और हमारे राधा गोविंद जी महाराज 7 दिन तक 3-3 घंटे इसी पर बोलते हैं, एक ही लीला पर। इतना सारा क्या कहते हैं नेक्टर भरा हुआ है उसके अंदर अमृत। तो आप लोग भी आस्वादन कीजिए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए। प्रभुपाद जी ने रात रात को जाकर भागवत लिखा है, उनके उनके शिष्यों ने उसको पूरा किया है, और उनके शिष्यों ने हजारों आचार्यों के संदर्भ देकर सभी तात्पर्य लिखे हुए हैं, बहुत अद्भुत है। ये राधा कुंड श्याम कुंडला जो तात्पर्य है ना, वो कई पेजों में है, एक श्लोक का कई पेज में है। वो सब संवाद दिए देवताओं के, तीर्थों के, भगवान के, राधा रानी के, गोपियों के, सब संवाद दिए हुए उसके अंदर। ऐसे अद्भुत तरीके से राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ है। परमोच्च तीर्थ स्थान निर्मिति का पूरा वर्णन भागवत में दिया है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो मैंने सोचा था कुछ और बताया कुछ और, लेकिन अभी वो बताऊंगा आपको। तो जब गोपाल जी प्रकट हुए तो माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किए, उसके दूसरी पीढ़ी ईश्वरपुरी, उनके शिष्य महाप्रभु चैतन्य बने। तो महाप्रभु उनके ऐसे पोता शिष्य हैं, यानी महाप्रभु जी के दादा गुरु माधवेंद्रपुरी हैं। तो उन्होंने कथा सुनी थी, स्वयं चैतन्य चरितामृत में ये कथा बताई गई है महाप्रभु के मुख्य द्वारा, माधवेंद्रपुरी ने कैसे गोपाल जी को प्रकट किया। तो उनको जब वृंदावन में आए तो गोपाल जी का दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन गोपाल जी तो पर्वत पर हैं और गौड़िया संप्रदाय हम सब लोग चढ़ते नहीं हैं पुष्टि मार्गी पर्वत पर। आई डोंट नो हु इज डूइंग वर्शिप, ब्रजवासी लोग करते हैं, लेकिन बाहर के भक्त जो आते हैं वो वहाँ पर चढ़ते नहीं हैं, हम लोग कोई चढ़ते नहीं उसके अंदर। तो महाप्रभु जी आए थे ब्रज में और उनको बहुत तीव्र इच्छा थी गोपाल जी के दर्शन करने के लिए। तो गोपाल जी भी उनको रहा नहीं गया, उन्होंने आतंक मचाया कि टर्की सोल्जर्स आ रहे हैं अटैक करने के लिए। तो सारे ब्रजवासी बिरगर को लेके भागे, और वो एक जगह है गांठोली गांव, उसका और एक नाम है गुलाल कुंड, उधर वो ले गए उनको छुपाने के लिए। तो महाप्रभु जी को पता चला कि अरे गोपाल जी गोवर्धन से उतर गए और वो गांठोली गांव गए हैं। तो महाप्रभु जी वहाँ भागे, वहाँ पर उन्होंने दर्शन किया खूब उनका। 7 दिन 7 रात उन्होंने धुआंधार कीर्तन किया, पूरे गांठोली ग्राम में सब लोगों को आनंद दिया और गोपाल को भी रिझाया। उसके बाद पता चला कि ये सब अफवाह थी, तो वापस जाने का प्लानिंग हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो जुलूस का नेतृत्व किया, उनके लीडरशिप में कीर्तन में जुलूस में उनको वापस वहाँ जतिपुरा तक लेके गए, फिर महाप्रभु नीचे खड़े रहे और ठाकुर जी को ऊपर जाके विस्थापन किया गया। तो गांठोली गांव क्या है, वहाँ पर एक बार राधा और कृष्ण ऐसे एकांत में बैठे थे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। तो कुछ देर बाद गोपियाँ वहाँ पर आई, देखी अरे ये दोनों एकांत में बैठे हुए हैं। तो उन्हें क्या है, चुपके से पीछे गए और दोनों के वस्त्रों को गांठ लगा दी और बैठे रहे चुपके। जब इनका एकांत जो है मग्नता ये बाह्य चेतना में आए, जब खड़े हो गए देखा तरह ये दोनों बंधे हुए हैं। जब बंधे हुए देखो तो शर्मा गए, सारी गोपियाँ जोर से हंस पड़ी। तो उनको और संकोच हुआ, रहे हम सब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं इधर। तो फिर वो जब भी अचंभित हुए अपने दोनों को गांठ में बंधते हुए, जब अचंभित हुए तो फिर उन्होंने रंग पिचकारी निकाली और गुलाल की पिचकारी उन पर इतनी मारी कि ये विशाल कुंड तैयार हो गया। विशाल कुंड, उसका नाम है गुलाल कुंड। बोलो गुलाल कुंड धाम की, गांठौली धाम की जय। जय श्री राधे श्याम।